भाई नेविल धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों, ये सौभाग्य है कि आज प्रातः फिर से इस आराधनालय में वापस आकर उस महान संदेश को निरंतर व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ये डेनियल का 70वां सप्ताह और इस गर्म दिन में बहुत से लोग जमा हुए हैं, उन्हें देखकर हमें प्रसन्नता है और अब भी हमें दुख है कि हमारे पास बैठने का स्थान नहीं है। देखिए वे लोग जो इस प्रकार से एक साथ इकट्ठे होकर चारों ओर खड़े हैं, ये असुविधाजनक है और ऐसे आरामदेह नहीं है जैसे होना चाहिए। इससे आपको समझने में कठिनाई होती है, परंतु हम हर वो बात करेंगे जिससे हम जल्द कर सकें। और आज मैं आशा करता हूँ यदि मैं थोड़ा लंबा कर दूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि ये संदेश में समय को यथा स्थान पर रखना है, इसी समय को ठीक स्थान पर रखना। हम इसे तीन क्रम में व्यवस्थित करते हैं ताकि हम इसे निश्चित रूप से पा सकें। अब निश्चय ये सामने दिखाई देने वाली सभा ये जानती है या ये संदेश टेप हो रहे हैं और ये समस्त संसार में भेजे जा रहे हैं। व्यवहारिक रूप से समस्त संसार में प्रत्येक राष्ट्र इन टेपों को प्राप्त कर रहा है और मैं टेप सुनने वालों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप संसार के किसी भी भाग में हो, आप हम में सम्मिलित हैं। ये हो सकता है यहाँ कुछ बातों में जो यहाँ सिखाई जा रही हैं आप मेरे साथ सहमत ना हो जिससे मैं हूँ। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप देखते हैं और आप इसकी व्याख्या करेंगे तो ये मेरे विश्वास से भिन्न हो, परंतु जो आपने कहना है उसे सुनकर मैं प्रसन्न हूँगा और ये उन विचारों के साथ है जो मैं इन संदेशों को अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों के साथ लाता हूँ। ये कलीसिया के लिए उन्नति है, सारी कलीसिया के लिए, विश्वव्यापी कलीसिया, मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया। और निश्चय ही मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम अंत के दिन में रह रहे हैं और मेरे प्रयास इसकी व्याख्या करने का है, तो भी मैं किसी पर किसी प्रकार की थोपने की कोशिश नहीं करता और मैं ऐसा करने का दोषी नहीं हूँ। बहुत सी बार लोग टेप सुनते हैं और वे कहते हैं ठीक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, वो अपनी शिक्षा को नहीं जानता, न ही वचन को जानता है। हो सकता है वो पूरा सत्य हो, समझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सत्य नहीं है, परंतु मैंने इसका अध्ययन किया है, कोई शब्द नहीं निकाला है, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है मैंने पढ़ा है और उसकी सराहना करता हूँ, कोई भी कुछ कहता है मैं इसकी सराहना करता हूँ, परंतु फिर मैं परमेश्वर के पास ले जाता हूँ और वहाँ पर तब तक रुका रहता हूँ जब तक मैं इसकी व्याख्या उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक नहीं कर सकता, और तब देखता हूँ कि ये सब बाइबल से मेल खाता है और तब मैं जानता हूँ कि ये सही के आसपास है। और निश्चय ही जहाँ आप ठीक हैं वो केवल एक स्थान है जहाँ से मैं उस लीक से हट जाता हूँ, और संभवतः जहाँ आप गलत हैं या सही वही मैं लीक से हटता हूँ और इसकी दूसरी ओर से। इसलिए आज प्रातः आप जो अच्छे लोग इस सभा में उपस्थित हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और आप जो अच्छे लोग टेपों को सुनते हैं, और हम सब जो किया गया ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए है। समस्त संसार में मेरे अनेकों मित्र हैं जिनकी मैं बहुत सराहना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं उनके साथ अनंतता में बिताऊंगा, और मेरे हृदय में उनको धोखा देने के लिए कुछ नहीं है किसी भी प्रकार से, परंतु हर बात घटित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं उनकी सहायता कर सकूँ। मैंने सुलेमान के समान अनुभव किया जब उसने प्रार्थना की और कहा कि उसे बुद्धि मिले ताकि वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर सके। ये मेरे हृदय की निष्कपट प्रार्थना है। मेरे मिलने वाले जो यहाँ पर मेरे आसपास हैं, मैं भाई मर्सियर को देखता हूँ और भाई रॉय वॉर्डर्स और भाई नेविल और बिली पॉल मेरा पुत्र जीन भी यही कहीं हैं और भाई टेडी के लोग और वे, मैं इन सब लोगों की सराहना करता हूँ जो मेरी सहायता के लिए आए हैं। मुझे स्मरण है अधिक समय नहीं हुआ भाई लियो एक दर्शन कि उन्हें एक स्वप्न हुआ, उसने एक रात्रि जब हम पहले मिले थे बताया कि उन्होंने पैरामिड की एक चोटी वहाँ हवा में देखी, और मैं वही कहीं प्रचार कर रहा था और वो ये सब देखने के लिए ऊपर चढ़ा, और जब वो इस चोटी पर पहुंचा, क्यों उसने कहा एक प्रकार की चांदी की सी ज्योति या एक समतल जैसा मैं खड़ा हुआ लोगों को प्रचार कर रहा था, और उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और मैंने उसके चारों ओर देखा और उसने कहा कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, कि मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। मैंने कहा, लियो, यहाँ कोई नहीं आ सकता, परमेश्वर मनुष्य को यहाँ लाता है। अब तुम्हें यहाँ ऊपर नहीं आना है, तुम्हें नीचे जाकर उन सब नीचे के लोगों में गवाही देनी है, जब तुम देख चुके हो कि ये सत्य है, कि ये सत्य है। लियो लोगों में गवाही देने के लिए नीचे चला गया। भाई लियो कितने समय पहले? बहुत वर्षों पहले, है ना? बहुत वर्षों पहले। तब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो इसे ईमानदारी से कर रहे हैं, इस बात की गवाही लोगों में दे रहे हैं कि ये सेवकाई परमेश्वर की ओर से है। अब और मैं नहीं चाहता कि ये मेरी ओर से हो। यदि ये मेरी ओर से है तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि मनुष्य में कोई अच्छी चीज नहीं है। देखिए, इसे परमेश्वर की ओर से आना है। अब जब मैं चारों ओर देखता हूँ, बीते कल दोपहर को मैंने अपने मित्र भाई वेस्ट से हाथ मिलाया। मैं अभी तक उन्हें देख नहीं पाया हूँ इस भवन में। जी हाँ, अब आज प्रातः। और आप जानते हैं कि वे लोग कितनी कितनी दूर से कारें चलाकर नीचे अलाबामा से रविवार के लिए चलते हैं कि यहाँ पहुँचे, वहाँ दूर अलाबामा से। भाई वेल्च इवान, मैं उनसे पिछले रविवार नहीं मिल पाया। किसी ने बताया कि आज वे यहाँ हैं। वे लोग टिफ्टन जॉर्जिया से कार चलाकर यहाँ आते हैं, और भाई और उनके माता पिता यहाँ बैठे हैं, बहुत से भाई पामर मेकन जॉर्जिया से। और मैं देखता हूँ, मेरा विश्वास है कि बहन एनग्रिन और वे वहाँ पीछे हैं, वे सब मेफ्सी टेनेसी से यहाँ हैं। अब आप सोचते हैं, और दूसरे स्थानों से। अभी एक महिला से मिला हूँ, वो वहाँ दक्षिणी कैरोलिना से है। अब आप सोचते हैं कि लोग यहाँ, मैं शिकागो से देख रहा था और उन विभिन्न स्थानों में सैकड़ों सैकड़ों मील कार चलाकर केवल सभा में उपस्थित होने के लिए। और जब वे यहाँ पहुँचते हैं तो कोई स्थान नहीं होता कि बैठ सकें, ना ही वातानुकूलित कमरा, एक पुराना गर्म भवन। खड़े होकर पसीना पोंछते रहते हैं, अपने बालकों से उनकी मेज पर के पैसे लेकर यहाँ आते हैं कि इस संदेश को सुने। मुझे बताने का अर्थ ये होता है कि कहीं भी ऐसा नहीं है, इस धारा को छोड़कर कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ कि वे इन दिनों में जा रहे हैं। निश्चय ही ये है, ये निष्ठा है। ये लोग दशमांश देने वाले हैं, वे केवल आते ही नहीं है, वे अपने दशमांश और भेंटे लाते हैं और इस प्रभु के घर में लाते हैं, जो ठीक है उसे करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ऐसे ईमानदार लोगों को बहुतायत से आशीष देता है। परमेश्वर का अनुग्रह और दया उनके साथ है। मैं अपने मित्र चार्ली कॉक्स को देखता हूँ, वे जो नीचे दक्षिणी केंटकी में हैं, और सब जगह आप चारों ओर देखें, भिन्न भिन्न स्थानों से लोग हैं। वो जो नवयुवक वहाँ बैठा है, मैं उसका नाम याद कर सकता हूँ, मैं उससे शिकागो में मिला था। परंतु आप कहीं किसी बाइबल विद्यालय से हैं, कहीं से, क्या आप नहीं है? स्प्रिंगफील्ड मसूरी असेंबली ऑफ गॉड बाइबल स्कूल। जी हाँ, बहुत अच्छा है। आप देखिए, वे सब स्थानों से आए हैं इस छोटे से पुराने आराधनालय में। थोड़ा सोचिए, लगभग 30 वर्ष पहले जब मैंने उस प्रातः कोने का पत्थर रखा था, मैं वहाँ 7th स्ट्रीट पर एक ग्रह समूह छोड़कर वहाँ खड़ा था। मेरा तब तक विवाह नहीं हुआ था, एक नवयुवक, और मैंने दर्शन देखा, सब लोग आकर इसमें खचाखच भर गए हैं, और मैं बहुत प्रसन्न था। प्रचार मंच के पीछे खड़ा था, और जब उसने मुझे ये बताया, परंतु ये तुम्हारा आराधनालय नहीं है, और उसने मुझे आकाश के नीचे बिठाया, और बाकी कहानी आप जानते हैं, जो कि बाइबल के पन्ने पर लिखी है, जो कोने के पत्थर में रखी है। मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। मैं नहीं कर सकता, ये कहने के लिए बहुत छोटा है, भाई मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, परंतु मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ आपके अनुभवों का विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास नहीं करता कि एक पुरुष या महिला सैकड़ों मील कार चलाकर यहाँ अपने कपड़ों को कि कैसे पहने हुए हैं दिखाने के लिए आए। मैं नहीं सोचता कि वे ऐसा करते हैं, नहीं, वे यहाँ अपने को दिखाने नहीं आते। वे यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि वे अपने प्राणों के प्रति बहुत ही गहराई से और निष्कपटता से उद्धार के प्रति सचेत हैं। मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे कि कम से कम मैं उसका आधा ईमानदार हूँ कि उनकी सेवा करने का यत्न करूँ, उस सब से जो मेरे हृदय में है, और परमेश्वर की ओर देखूँ। जो संदेश आपने आज प्रातः देखा, वो यहाँ श्याम पट पर बना दिया गया है। ये केवल व्याख्या हेतु बना है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करूँगा जिस पर कि मैं बोलने का यत्न कर रहा हूँ। और ये डेनियल के 70 सप्ताह हैं, जिसका गहराई से अध्ययन किया गया है। 2 दिन और 2 रात के लगभग मैं यहाँ सप्ताह के अंत में इसी पर था, सच्चाई के लिए कौन से वचन कहूँ, ये ढूंढने का यत्न कर रहा था। मैं इसकी बाकी बाइबल से तुलना कर रहा था। देखिए, आप इसे यूं ही नहीं ले सकते कि एक छोटा सा वचन लेकर इसे समझा दें और फिर कहें कि ये कहता है और तब घूमकर कहें परंतु यहाँ कुछ और कहता है, इससे मिलता नहीं, ये नहीं चल सकता। इसे तो सारे समय एक ही बात कहनी है। यदि आप नहीं करते क्यों, तब वो आप गलत हैं। और इस प्रकार से मैं सिखाने का यत्न करता हूँ। प्रसंगवश टेपों पर, ये टेपों पर होने के कारण मेरे भाइयों की मेरे टेप पर महान आलोचना जो संसार के विभिन्न भागों में है, वे परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। वो जो मैं जिस प्रकार से सिखाता हूँ कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले से चुने हुए हैं। निश्चय ही मेरे पेंटिकॉस्टल भाई, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का दृष्टिकोण विधिवादी है और मैं जानता हूँ कि ये आपके दृष्टिकोणों को विचलित करता है। परंतु क्या आप एक मसीह भाई होने के नाते क्या आप इस पर थोड़ा और ध्यान देंगे कि परमेश्वर के सन्मुख बाइबल के साथ घुटनों पर आकर परमेश्वर से अपने लिए इसकी व्याख्या करने को कहेंगे? क्या आप ये करेंगे? क्या आप विधिवादी सूत्र को लेकर और उन्हें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जोड़ेंगे? और सर्पवंश जो मार डालने वाला है, बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं करते। परंतु यदि आप केवल उत्पत्ति में पढ़ें तो बाइबल बताती है कि सर्प का एक वंश है और मैं सर्प के वंश और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। इसलिए सर्प का भी एक वंश है और यदि सर्प का वंश आत्मिक है तो यीशु एक मनुष्य नहीं था, इसलिए स्त्री का वंश आत्मिक था। उन दोनों का वंश था और बैर अब भी है, सर्प का वंश था। और यदि आप अपनी बाइबल को लें और वास्तव में भक्ति भाव में परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। यदि आप इसे नहीं समझते तो मैं किसी भी समय उपलब्ध हूं अपनी ओर से आपकी भरसक सहायता करने के लिए, पत्र द्वारा या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए या कोई भी बात कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। निश्चय ही हम विश्वास करते हैं कि ये मनुष्य को नहीं बचा सकता, न ही ये उसे दोषी ठहराता है, परंतु ये विषय पर प्रकाश डालता है कि हम सब यत्न करते हैं कि लोग इसे देख सकें, समझे? ये केवल प्रकाश लाता है। अब जो सभा दिखाई पड़ रही है, मैंने ये टेपों के कारण कहा है, आप देखिए, और ये टेप सब जगह जाएंगे। अब आइए थोड़ी देर के लिए अपने सिरों को झुकाएं इससे पहले के वचन के लेखक के पास पहुंच करें। और अब कितने लोग आज प्रातः इस सभा में आवश्यकता में हैं? केवल कहें मैं आवश्यकता में हूं, ओ परमेश्वर मुझ पर दयावान हो, प्रभु आशीष दे। और आप जो इस टेप को सुनेंगे, जब आप इसे सुने, होने पाए कि परमेश्वर आपके निवेदन को स्वीकार करे। हमारे स्वर्गीय पिता, जबकि हम अयोग्य लोग हैं, हम आपके आभारी लोग हैं, परंतु हम आज प्रातः आपके अनुग्रहकारी सिंहासन की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इसी कारण हमें आने का निमंत्रण मिला है। यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से पिता से जो चाहो मांगो, मैं उसे करूंगा। अब हम जानते हैं कि ये सत्य है, और यहाँ सभा में और बाहर दूर देशों में जहाँ ये टेप जाएंगे, वहाँ हो सकता है 10,000 फिर से जन्म पाए मसीही लोग इसे सुने। और पिता, हम जानते हैं जब हम नया जन्म पाए हुए होते हैं कि हमारी आत्मा ऊपर से उत्पन्न होती है। ये परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर होता है, और हम अनुभव करते हैं कि पवित्र आत्मा सर्व सामर्थी है और हम जो भी करना चाहें हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तब स्वर्गीय पिता, हम आपसे मांगते हैं कि हमारे विश्वास को उस आत्मा के लिए भेज दें, ताकि इस प्रातः वो हमें सुरक्षित करने योग्य हो और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए ये सारे निवेदन और इच्छाएं, ताकि हम अपनी बीमारियों से और अपने दुखों से चंगे हो जाएं, ताकि हम अपने परमेश्वर को जो कुछ हम में है उससे उसकी सेवा कर सकें। हमारी समझ के कानों को आज खोल दे, और जैसा कि मैं इस महान प्रश्न को जो लोगों के मस्तिष्क में है समझाने के लिए सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, अब मैंने इसे यहाँ लिख लिया है प्रभु, इस कागज पर और इस चार्ट को इस श्याम पट पर बना दिया है, परंतु इसकी व्याख्या के लिए ये पूर्णतः अपर्याप्त है। महान स्वामी, अब हम आपको पुकारते हैं जिसने ये वचन लिखे, जिसने प्रेरित किया, जिसने इसे दानियल भविष्यद्वक्ता को दिया, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज की प्रातः आप प्रेरणा को इस अंत के दिनों में भेजेंगे, जैसा कि उसने कहा कि पुस्तक इस समय तक बंद हो जाएगी, कि आप हमारी समझों को खोलेंगे और होने दे कि हमारे हृदय में एक कोमल तल विश्वास का हो, वही वचन और जीवन को पकड़ेगा और हमारे जीवन में धार्मिकता के पेड़ों को बढ़ा लाएगा। यही करने का अभिप्राय है। हमारा विश्वास परमेश्वर में इस प्रातः हमें सुरक्षित रखे, क्योंकि हम नम्रता में प्रतीक्षा कर रहे हैं और स्वयं को आपको समर्पित कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम इस प्रातः के लिए आभारी हैं कि फिर से एक अच्छा सुअवसर इन परमेश्वर के अनंत वचनों के पन्नों को खोलने के लिए मिला है। अब यही कारण है कि मैंने स्वयं ये करने का यत्न किया है कि इसकी इस कारण से व्याख्या करूं। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देख रहे हैं और अभी हमने सात कलीसियाई युगों को देखा है और प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय के अंत में कलीसिया पृथ्वी से महिमा में उठा ली जाती है और अपने पूरे हृदय से यत्न कर रहा हूं कि लोगों को पहुंचा दूं, क्योंकि वे कुछ घटित होने की आशा कर रहे हैं कि उन्होंने इसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ देखा है, जबकि ये कलीसियाई युग के लिए लागू नहीं था। आपके सोचने से भी अधिक हम अंत के समीप हैं। कुछ रात्रियों पहले बिली मेरा या बल्कि मेरी बहू ने मुझे फोन किया और कहा, एंडी हरमन नाम एक व्यक्ति जो मेरा चचेरा भाई है, वो अस्पताल में पड़ा हुआ मर रहा है। मैं उसे देखने गया, उन्होंने उसे निद्रा औषधि खिला रखी थी इतनी कि वो सो रहा था और मैं उससे बात नहीं कर सका। अगली प्रातः मैंने परमेश्वर से विनती की कि उसे तब तक जीवित रखना जब तक मैं उससे बात ना कर सकूं। एंडी एक अच्छा व्यक्ति है, परंतु वो एक मसीह नहीं था, वो अंकल नहीं, वो चचेरा, मेरी चचेरी बहन से विवाह किया था। और जब मौसी एंड ने मुझे बताया, वहाँ खड़े हुए उन्होंने बताया, बिली वो इन जीवन के 80 वर्षों में उसने परमेश्वर की सेवा नहीं की, परंतु बताया कुछ सप्ताह पहले वो घर में बैठा हुआ था, वो 80 वर्ष का था, ठीक है, वो अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता था, परंतु कहा, उसने उसे बुलाया और कहा, एंडी तुम जानती हो मसीह यहाँ मेरे सामने अभी कुछ मिनटों पहले आया। उसने उसे देखा, कहा, एंडी क्या मामला है? उसने कहा, नहीं, वो यही मेरे सामने खड़ा था और उसने कुछ कहा। बोली, उसने क्या कहा? ये तुम्हारे सोचने से पहले है। और तब से कुछ सप्ताह पश्चात, 2 या 3 सप्ताह, उस पर आघात हुआ और वो अस्पताल में लकवे से मर रहा था। मैंने कहा, मौसी एड, लज्जा की बात है कि आपने मुझे या किसी और को नहीं बुलाया कि इस घड़ी के लिए उसके हृदय को तैयार करते जहाँ वो अब पहुँच चुका है। मैंने प्रभु से विनती की कि अगली प्रातः जब मैं वो बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे केवल ये पूछा, मैंने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो अंकल एंडी? वो थोड़ा थोड़ा अपना सर हिला सकता था और अपना जबड़ा। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उससे परमेश्वर के सम्मुख उसके पाप स्वीकार कराए। मैं उसे बपतिस्मा देना चाहता था और मौसी एड भी बपतिस्मा लेना चाहती थी। मैं उस विशाल कमरे में नीचे उस नवयुवती को देखने गया जो यहाँ पड़ोस में रहती थी। वे उसे पागलखाने भेजने जा रहे थे और प्रभु ने उसके लिए महान कार्य किया, वापस घर आ गई। तब वहाँ ऊपर सड़क पर मैं अश्वेत बहन से मिला और उसने कहा, क्या आप भाई ब्रैनम नहीं है? मैंने कहा, मैं हूँ। वो बोली, आपको मेरी याद है, मैं श्रीमती डायर हूँ। और मैंने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, याद है, पैट डायर। और वे, मैंने कहा, हाँ, मुझे स्मरण है कि आप। उसने कमरे में देखा और जब हम, मुझे आश्चर्य हुआ, उसने ये क्यों कहा? और हम, अंकल एंडी पलंग में से उठकर वहीं बैठे थे, अपने हाथों को और बाहों को किसी भी मनुष्य की तरह हिला रहे थे, चीजें लेने की कोशिश कर रहे थे, पलंग के नीचे चीजें रखी थी ताकि वहाँ पहुँच कर और लेकर बाहर चले जाएं। अब वो और उनकी पत्नी प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। परंतु मैंने इसके लिए क्या कहा, यह हमारे सोचने से पहले है। और मैं विश्वास करता हूँ कि डेनियल के ये 70 सप्ताह ये हमारी समझ में आएंगे। अब हमारे बहुत से पेंतिकॉस्टल भाई, जिनके लिए मैंने टेप पर पहले कहा कि वे इससे असहमत हैं। वे किसी महान सामर्थ्य कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मेरे भाई, यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और सुनेंगे, आप पाएंगे कि ये महान सामर्थ्य कुछ घटित हो चुका। यीशु आने के लिए तैयार है। कलीसिया प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय में चली जाती है। वहाँ उसमें कुछ भी नहीं कहा गया, केवल अंतिम बात, अंतिम युग का संदेशवाहक। तब हम यहूदियों के साथ व्यवहार करते हैं जब तक वो 19वें अध्याय में दुल्हन के साथ फिर से नहीं आता। छठे से 19वें अध्याय तक ये सब यहूदी हैं। यही जहां मैं अपने अच्छे भाई को लाना चाहता हूं। यहां इन मोहरों के दौरान भाई वुड, जो पहले यहोवा विटनेस थे, वो और उसका समस्त परिवार आज प्रातः यहां पर है कि उन 144,000 का अन्य जातियों से कुछ लेना देना नहीं। देखिए, वे लोग यहूदी हैं, समझे? और आज ये मसीह की दिव्य देह पृथ्वी पर नहीं है, वो दुल्हन दिव्य देह है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा इस दिव्य देह में बपतिस्मा हुआ। अब हम जानते हैं कि डेनियल की पुस्तक में, यहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं, हम फिर से पढ़ेंगे क्योंकि ये उसका वचन है। डेनियल के 9वें अध्याय में 24वां पद, 13 लोगों और नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि अपराध का होना बंद हो, पाप का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट होवे, और दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। 25वां पद, और इसलिए जानते हुए और इसमें से ये समझते हुए, अब ये है जिस पर हम बोल रहे थे और हमने पिछले रविवार रात्रि को समाप्त किया, परम पवित्र का अभिषेक। यहाँ अब इस प्रातः हम 25वें पद से आरंभ करते हैं, और इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर ये जो तेरा पवित्र नगर है, मसीह प्रधान 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उसका अंत ऐसे होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और अब स्मरण रहे कि ये लड़ाई का अंत है, ये यहाँ हमारे पास श्याम पट पर है, और अब हम कुछ और आरंभ करने जा रहे हैं। और वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अनबलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, बस। और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओ, कितना शानदार पाठ है। उस दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे लिए आश्चर्य की बात है यदि लोग इसे वास्तव में समझ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें, नहीं तो यदि आप, हमें यहाँ पूरे दिन रुकना पड़ेगा, केवल रुकना। अब हम इसे लेना चाहते हैं, समझे? अब हम जानना चाहते हैं कि ये सत्य है, और आप यदि आप इसे केवल देख सकते हैं, और मैं पूछूंगा, हो सकता है, और तब इसके बाद मैं चार्ट को यहीं लटका रहने दूंगा, बाद में आप इसे उतार सकते हैं, यहाँ दोपहर बाद अंदर आकर जहाँ भी आप चाहते हैं इसकी नकल कर लें, और आदि आदि। ये आपको समझने के लिए सहायता करेगा, इसी कारण मैंने इसे यहाँ टांगा है ताकि आप इसे समझ सकें। अब आइए इसे थोड़ा सा दोहरा लें ताकि हमें आधार मिल सके। अब डेनियल अपने लोगों के लिए विचारशील है, क्योंकि उसने यरमिया भविष्यद्वक्ता को पढ़ा था और समझा कि यरमिया ने कहा था कि वे लोग 70 वर्षों के लिए बंधुआई में रहेंगे। तब उसने देखा कि वे पहले ही 68 वर्षों से बंधुआई में थे, इसलिए वो जान गया कि समय निकट है। इसलिए उसने अपने सारे कार्य छोड़कर, जैसे कि उसके प्रतिदिन के कार्य थे, अपना मुख परमेश्वर की ओर किया, टाट और राख अपने पर डालकर उपवास और प्रार्थना में चला गया, ताकि वो समझ सके कि वो समय कब होगा। तब हम पाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्या आप इसे उस ओर घुमा देंगे? थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बहुत है, ये मेरा गला खरखरा देगा। धन्यवाद भाई। अब हम ये पाते हैं कि डैनियल वो ये सूचना अपने लोगों के लिए पाना चाहता था, और मैं सोचता हूँ यदि डैनियल अपने से पहले भविष्यवक्ताओं को पढ़ता था और इस प्रकार की समझ थी कि वो अंत में है और परमेश्वर को ढूंढना कि मालूम करे कि अंत कितना निकट है, तब मैं सोचता हूँ कि हम न्यायोचित हुए ये देखने के द्वारा कि अब हम मार्ग के अंत में हैं, टाट और राख ओढ़कर नहीं, परंतु संसार की वस्तुओं को छोड़कर और इस जीवन की चिंताओं को और परमेश्वर को खोजें, ये मालूम करने के लिए हम वर्ष के किस दिन में हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अंत में हैं, और इसलिए कलीसिया उपवास और प्रार्थना करेगी और तैयार होगी। इसलिए मैंने ये अपने ऊपर लेने का प्रयास किया है, ये ना जानते हुए कि कैसे इसकी व्याख्या करूं, क्योंकि हर बार मैंने इसे छोड़ दिया और कहा वे डैनियल के 70 सप्ताह, क्योंकि मैं इसे नहीं समझ सका था, और इसी कारण अब मैंने इसे अपने ऊपर लिया कि व्याख्या करने का प्रयत्न करूं, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की सहायता से मैं उसके अनुग्रह से कर सकता हूं, इसे वहां पर लाऊं जहां आपको दिखा सकूं कि हम प्रभु के आगमन के कितने समीप हैं। अब डैनियल केवल इन 2 वर्षों में था, तब हम पाते हैं कि जब वो प्रार्थना में था, जिब्राइल सरदूत उसके पास तेजी से आया और उसको केवल ये समझाने के लिए नहीं कि कब उसके लोग बंधुवाई से निकल रहे हैं, परंतु ये भी कि वो सब जो उसके लोगों के लिए ठाना गया है और वो सब जो उसके लोगों के लिए बाकी बचा है। उसने कहा यहूदियों के लिए अभी 70 सप्ताह बचे हैं। तब हम पाते हैं कि उसका 6 सतह उद्देश्य था, और उसमें से एक समाप्त होना था, वो अपराध और पाप का होना बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, युगान युग की धार्मिकता आए, दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप हो और परम पवित्र का अभिषेक हो। और हमने पिछले रविवार प्रातः डैनियल वहाँ अपनी स्थिति में प्रार्थना कर रहा है ये लिया था, पिछले रविवार की सांझ वचन के भाग दिए थे ताकि लोग जब घर पहुँच जाएं तो उसे पढ़ लेंगे। क्या आपने पढ़ा? क्या आपको पसंद आया? बहुत ही बढ़िया। अब 6 सतह का उद्देश्य, और हम पाते हैं कि इन 6 उद्देश्यों में परम पवित्र का अभिषेक करना, हम पाते हैं कि परम पवित्र सदा कलीसिया आराधनालय को दर्शाता है, और अंतिम चीज जो होनी थी परम पवित्र का अभिषेक था, वो सहस्र शताब्दी का आराधनालय जिसमें वो सहस्र शताब्दी की अवधि में रहेगा, हम उसमें रहेंगे। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि 70 सप्ताह क्या हैं, और ये बहुत ही जानदार भाग है 70 सप्ताह। अब हम जानते हैं कि वचन झूठा नहीं हो सकता, वे सच्चे ही होने हैं, और यदि जब्राइल सरदूत आकर और डैनियल को बताता है कि यहूदियों के लिए केवल 70 सप्ताह बचे हैं, अब हम इसे 6 दिन में लागू करेंगे अथवा 7 दिन का सप्ताह, परंतु भविष्यवाणी में ये सदा दृष्टांतों में दिया जाता है, और इसलिए कोई संदेह नहीं कि इन युगों में होते हुए बहुत सी बार सैकड़ों लोगों ने, ज्ञानियों ने, योग्य पुरुषों ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया कि ये 70 सप्ताह क्या थे, और मैंने उनकी बहुत सारी टिप्पणियाँ इस पर पढ़ी है, और मैं श्री स्मिथ का उनके दृष्टिकोणों के लिए बहुत आभारी हूँ, एडवेंटिस्ट चर्च के। मैं डॉक्टर लार्किंस का उनके दृष्टिकोणों के लिए बहुत ही आभारी हूँ। मैं इस पर उन सब महान विद्वानों का उनके दृष्टिकोणों के लिए आभारी हूँ, और उन्हें पढ़ते हुए मुझ पर इसका प्रकाश पड़ा कि मैं जो ठीक दिखाई पड़ते हैं उन स्थानों को ढूंढ सकता हूँ, परंतु इन दृष्टिकोणों को लेकर जो मैंने सोचा कि मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा, मैंने समय के बहुत से शास्त्र खोजे ये ढूंढने के लिए कि समय का क्या अर्थ होता है, और हम यहाँ पर पाते हैं कि हमें समय समय और समय का विभाजन मिला। समय क्या है? सप्ताह क्या है? अब ये 3430 वर्ष पहले जब ये था, जब से परमेश्वर ने यहूदियों से व्यवहार करना आरंभ किया, बहुत बहुत वर्षों पहले डेनियल मसीह से पहले था और वो समय 538 ईसा पूर्व, मसीह से 538 वर्ष पहले, जब उसने ये बोला समय समय और समय का विभाजन और 70 सप्ताह। देखिए 70 सप्ताह उसे कहाँ ले जाएंगे, वो क्यों अभी भी बाबुल में था इन 70 सप्ताहों में। और तब भी परमेश्वर ने उसे बताया कि वो सारा समय तेरे लोगों के लिए ठहराया गया था। अब मेरी कलीसिया जानती है, मैंने आपको इन वर्षों में बताया है कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये सप्ताह का कौन सा दिन है तो कैलेंडर में देखिए, परंतु यदि आप वो समय जानना चाहते हैं जिसमें कि हम रह रहे हैं तो उन यहूदियों पर ध्यान दें, केवल वही समय सूचक हैं। परमेश्वर अन्य जातियों के लिए कोई निश्चित समय नहीं ठहराया, कोई विशेष समय अवधि नहीं है। और मैं सोचता हूँ यहीं पर जहाँ पर बहुत से महान लेखक गड़बड़ हो गए और इसे यहूदियों और अन्य जातियों पर लागू करने का प्रयास किया, क्योंकि उसने कहा तेरे लोगों, परंतु वो डेनियल से बातें कर रहा था, कलीसिया से नहीं, डेनियल के लोग यहूदी। यदि वो कलीसिया से बातें कर रहा था तो आप उसे कहीं नहीं चला सकते, आप वहाँ पीछे मसीह के आगमन से पहले, ये किसी भी प्रकार के भविष्यद्वक्ताई सप्ताह में नहीं चलेगा जिसमें कि आप इसे रखना चाहते हैं, ये तो पहले ही चला गया। परंतु वो यहूदियों से बात कर रहा था, इसलिए यहूदी परमेश्वर का समय सूचक है। आपको यहाँ स्मरण होगा कि अधिक समय नहीं हुआ जब कैलिफोर्निया के भाई अर्गन ब्राइट इंटरनेशनल फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मेरे घर पर आए और एक टेप लाए, और टेप नहीं परंतु एक चलचित्र, वो 3 मिनट्स टिल मिडनाइट, अर्धरात्रि के 3 मिनट, ये वैज्ञानिक खोज के ऊपर लिया गया। जब मैं उन यहूदियों को यरूशलेम में वापस आते हुए देखता हूँ, मैं यहाँ इस आराधनालय में आया और मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि मेरा फिर से धर्मांतरण हो गया। आप में से बहुत से लोगों को स्मरण है, मैंने कहा उन यहूदियों को वापस आते देखते हुए, यीशु ने मत्ती 24वें अध्याय में कहा, जब तुम इस अंजीर की कोपरे निकलते देखो, आप जानते हैं कि क्या देखना है। देखिए यहूदी वापस आ रहे हैं। मैंने यहाँ कुछ टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं, मैं उन्हें लेना चाहता हूँ। अब मैं अपना समय लूंगा ताकि आप भी उसे लिख सकते हैं। अब ये सब यहाँ होता है, इस समय में जिसमें अब हम हैं, ये सब उनके लिए घटित होगा, ये यहूदी हैं। इसका कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी चीज प्रकाशित वाक्य के 3:19 इसमें कुछ भी कलीसिया से मतलब नहीं, आप इसमें से कुछ नहीं निकाल सकते, ये वहाँ है ही नहीं। अब मैं आपको इसकी व्याख्या देना चाहता हूँ कि मैंने इसे कैसे पाया। अब श्याम पट पर आप में से बहुत से देखेंगे कि मैंने इसे बनाया है, समयों का अंतर जो कि इस समय अवधि में आता है, इसलिए कि ये ऐसा बनाया जा सके कि हर कोई समझ सके। क्या आप वहाँ पीछे से देख सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, और ये बैकी ने लिखा है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, ये बैकी की लिखावट है मैं सोचता हूँ। और ये चित्र जो मैंने बनाया इससे भी बेकार है, परंतु बैकी ने नबूकदनज़र के स्वप्न का चित्र बनाया है, और मैं सोचता हूँ कि ये अधिक एक लड़की बैकी के समान लग रहा है बजाय एक पुरुष के, परंतु जो भी है ये सूचना प्रदान करेगा जो हम चाहते हैं। अब यदि हम बाइबल में पढ़ें कि 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए ठहराए गए हैं, अब इसका कलीसिया से कोई मतलब नहीं, 70 सप्ताहों का कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं। अब यदि आप यहाँ इस चार्ट पर ध्यान दें तो मैंने कलीसिया युग को 70 सप्ताहों के बीच में रखा है। हम यहाँ पर हैं, जॉर्जिया से किसी भाई ने इसे हमारे लिए बनाया है जैसे कि हम कलीसियाई कालों से निकले हैं, और हम निश्चित हैं, हम समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। ये यहाँ कलीसिया में सफेद सफेद, इसका अर्थ है कि ये सब प्रेरिताई था, और तब दूसरी कलीसियाई युग में उनके पास निकोलाइयों की शिक्षा थी, या उनके निकोलाइयों के कार्य थे जो कि शिक्षा बन गए थे, तीसरे कलीसियाई काल में शिक्षा बन गए थे, और चौथे कलीसियाई युग में ये संस्थागत हो गया था, और ये रोम का पोपवाद था, और चौथा कलीसियाई युग ये अंधकार का काल था। आप ध्यान दें, ये सारा अंधकार यहाँ निकोलाईवाद या रोमनवाद को दर्शाता है, सफेद भाग पवित्र आत्मा को कलीसिया में दर्शाता है, और जैसा कि ये संत पौलुस के समय में आरंभ हुआ था, सारी की सारी प्रेरिताईवाद कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, तब कुलीन लोग इसमें आना आरंभ हो गए, और तब अंत में उन्होंने इकट्ठे होकर इसमें से पूरी तरह से एक नई कलीसिया बना दी और वो छोटी सी कलीसिया जला दी गई, पथरवा कर दी गई और सिंहों को खिला दी गई आदि आदि। सुधार में लूथर आता है, थोड़ी सी अधिक ज्योति, आप समझे। वेस्ली के दिनों में अभी और अधिक ज्योति, परंतु यहाँ इस अंतिम कलीसियाई काल में निकोलाई कलीसिया युग, यही युग है जो कि हम निकोलाई नहीं परंतु लुदेसिया जिस युग में हम रह रहे हैं। आप ध्यान दें, यहाँ बहुत अधिक ज्योति नहीं है। किसी ने जब उन्होंने वहाँ ये चित्र देखा बोला, भाई ब्रणम आपके लिए बहुत लज्जा की बात है, ये ज्योति में महान दिन। मैंने कहा मैं विचार करूंगा ये कब नीचे चला गया, ये तो न्याय तक नहीं करता। जब आप वास्तविक शुद्ध हृदय में होते हैं, आत्मा में नया जन्म पाए हुए, याद रखें केवल यही कलीसिया युग था कि मसीह को उसकी ही कलीसिया से उन सब ने बाहर निकाल दिया। हमारे पास बड़े बड़े अंगीकार हैं, परंतु क्या हमारे पास अधिपत्य है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं? क्या वास्तव में मसीह कलीसिया में है? ये पूरी तरह से अल्पसंख्यक में है। आइए डेनियल के 70 सप्ताहों की रूपरेखा तैयार करें। अब मैं इसे फिर से दोहरा सकता हूँ। सुसमाचार के सेवकों, यदि आप इससे असहमत हो तो ठीक है, ये तीन समय अवधि में विभाजित है, जैसा कि हम डेनियल 9 में पाते हैं। तीन समय काल, पहला 7 सप्ताह की अवधि, तब 62 जो कि 62 है, और तब एक सप्ताह की अवधि। ये तीन विभिन्न अवधियों में विभाजित है। अब मैंने इसे यहाँ श्याम पट पर विभाजित कर दिया है, पहली अवधि, दूसरी अवधि और सुसमाचार के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी समझ में, अंत समय में परमेश्वर फिर यहूदियों की ओर मुड़ता है। अब हम जानते हैं सारे सुसमाचारों के द्वारा जो कि पौलुस ने सिखाए और दूसरों ने, कि परमेश्वर फिर से यहूदियों की ओर मुड़ेगा। अच्छा, यदि वो फिर से यहूदियों की ओर मुड़ने जा रहा है तो हम इसे पीछे डेनियल के समय में कैसे लागू कर सकते हैं? हमें इसे अंत समय में लागू करना होगा, और ये जब अन्य जाति कलीसिया जा चुकी होगी, क्योंकि वो इसराइल के साथ एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है और हमारे साथ एक व्यक्तिगत रूप में। अब यहाँ मेरे पास कुछ लेख हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर, जो कि 14 मार्च थी, यदि आप में से कोई लिखना चाहे हिब्रू में, आप पाएंगे कि ये NISAN निशान कहलाता है, निशान जिसका अर्थ मार्च है। 14 मार्च 445 ईसा पूर्व ये आज्ञा निकली कि मंदिर को फिर से बनाया जाए। आप ये समझ गए, जैसा कि आप लोगों ने पवित्र लेखों में पढ़ा है, जब तक ये पूरा ना हो जाए इसमें 49 वर्ष लगे कि मंदिर और नगर फिर से बनकर पूरा हो, जैसा कि बाइबल यहाँ कहती है। डेनियल बोल रहा है, यानी स्वर्गदूत डेनियल से बोल रहा है कि वो दीवारें वो कष्ट के समय में बनाई जाएंगी। और हम में से बहुत सो को स्मरण है, जब ये बना था तो उनके हाथ में मसाला और दूसरे हाथ में शत्रु का ध्यान रखने के लिए तलवार थी, और ये कष्ट के समय में बसाया जाएगा। इसलिए यहाँ जहाँ मैं पाता हूँ अपने दिनों को लेता हूँ। अब हमारे पास दो तीन विभिन्न कैलेंडर हैं। हम पुराने खगोलीय कैलेंडर पर वापस आते हैं और हम जूलियन कैलेंडर में पाते हैं कि उसमें 365 सही 1/4 दिन एक वर्ष में होते हैं। उन्होंने इसे सार्दिस और भिन्न भिन्न तारों के आधार पर इसे समयबद्ध किया। अब हम रोमन कैलेंडर में पाते हैं जिसमें कि अब हम रह रहे हैं, एक वर्ष में 365 दिन के कैलेंडर के द्वारा। परंतु मसीही या भविष्यद्वक्ताई कैलेंडर में हम पाते हैं उसमें एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि गड़बड़ी कैसे हुई। अब मैं केवल ये अपनी ओर से कह सकता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जल प्रलय से पहले अय्यूब और आदि आदि के दिनों में वे सितारों से समय को नियमित रखते थे, और हम समझते हैं या उससे पहले कि समय संसार कीली पर सीधा था। और तब मनुष्य के पाप से संसार हटकर झुक गया और बाढ़ आ गई। इसलिए हमारे पास बड़े बड़े ग्लेशियर और आदि आदि हैं, और पृथ्वी का ऊपर का और नीचे का भाग बर्फ से ढका हुआ है, हम ये जानते हैं। और ये पृथ्वी सीधी खड़ी हुई नहीं है, ये झुक गई है। ये उस स्थान से हिल गई जहां चांद और सितारे इसे देख रहे थे और अपने स्थान से हट गई। या आप इसके द्वारा अब समय को नियमित नहीं कर सकते क्योंकि ये असंतुलित हो गई, पीछे की ओर झुक गई। इसलिए ये उन सितारों के पास ठीक उस समय पर नहीं आएगी क्योंकि ये उन सितारों के प्रबंध से बाहर है। आप समझ गए? मैं विश्वास करता हूँ कि ये वही है। ये अभी तक उसी स्थिति में है और ये केवल ये दर्शाता है कि ये केवल एक समय अवधि है। क्या आप इसे देख सकते हैं? परमेश्वर प्रबंध से बाहर कुछ नहीं रखता, वो इसे कुछ समय तक इसी प्रकार चलने देगा। और मैं सच में विश्वास करता हूँ कि ये बात हुई थी। और इन अंत के दिनों में जब परमेश्वर कलीसिया को ये भेद प्रकट करने जा रहा है, उसने ये पहले नहीं किया। और इसके ना करने का कारण था कि कलीसिया सारे समय जागती और प्रार्थना करती रहे, न जानते हुए कि ये समय कब आ रहा था। परंतु आपको डेनियल 12 में स्मरण है, उसने कहा बुद्धिमान इसे अंत में अंत के दिनों में समझेंगे। समझे? ये उन्हें दिया गया है पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। बुद्धि की आत्मा कलीसिया में कलीसिया को ये बताने आती है कि कलीसिया को अंदर लाकर और ये प्रकट करे कि हम किन दिनों में रह रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जबराइल डेनियल के पास आया, पवित्र आत्मा अंत के दिनों में कलीसिया के पास आता है कि इन गहरे महान भेद की बातों को प्रकट करे। क्या अब आप समझ गए? अब ये खगोलीय वर्ष को हटा देगी, यानी जूलियन वर्ष कैलेंडर को देखिए, क्योंकि पृथ्वी तिरछी हो गई। हम ये सब जानते हैं स्कूल की शिक्षा के द्वारा, और ये उस प्रबंध से बाहर है। इसलिए वे सितारे पृथ्वी की कक्षा से उसी नियमित समय से पास होकर नहीं निकलेंगे। इसलिए रोमन कैलेंडर भी गलत है क्योंकि आप दिनों को एक साथ नहीं रख सकते। और बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ रख सकता हूँ जो कि पकृति स्वयं अपने द्वारा हमें सिखाती है कि वर्ष में 30 दिन होते हैं। अब आइए प्रकाशित वाक्य को लें, जहाँ कि हमें उन दो भविष्यवक्ताओं के दिनों में जाना है। बाइबल ने कहा उन्होंने 1260 दिनों तक भविष्यवाणी की। अब आप खगोलीय कैलेंडर लें, ये निश्चित ही 3.5 वर्षों से चूक जाएगा। और आप रोमी कैलेंडर लें जो हमारे पास है, ये भी इससे बहुत दूर से चूक जाएगा। परंतु आप भविष्यद्वक्ता वाला कैलेंडर लें और वहाँ ठीक 1260 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं। देखिए हमारे पास किसी माह में 30 दिन, अगले में 31 दिन, किसी में 28। देखिए हमने गड़बड़ कर दी। परंतु परमेश्वर के यहाँ उल्टा सीधा ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है, वो सदा ही एक सा रहता है। जी हाँ श्रीमान, बिल्कुल ठीक वैसे ही, एक माह में 30 दिन, 31 फिर 30, ऐसा कुछ नहीं। परंतु ये सब कुछ परमेश्वर की महान योजना में किया गया था कि कलीसिया जागती और प्रार्थना करती रहे, तैयार रहने के लिए, अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो ले। परंतु ओ, इन अंत के दिनों में उसने प्रतिज्ञा की है। अब हम देखते हैं कि हम कहां पर रह रहे हैं। अब स्मरण रखें, कुल मिलाकर इसे करने का उद्देश्य है। अब यदि 7 थे, देखिए, तो उसमें ठीक 49 दिन थे, बल्कि 49 वर्ष मंदिर बनाने में 7 भविष्यद्वक्ताई के 7 सप्ताह हैं, 7 सप्ताह, क्योंकि 7 सप्ताह मंदिर को फिर से बनाने के लिए ठहराए गए, और ये सही 49 वर्षों में बना था। अब हमारे पास सप्ताहों के समय का अर्थ है, क्योंकि यदि बाइबल ने कहा, सरदूत ने कहा कि इसमें 7 सप्ताह लगे थे जब तक मंदिर नहीं बना, और ये ठीक 49 वर्ष मंदिर बनाने में लगे मार्च 14 से 538 ईसा पूर्व, जब तक मंदिर फिर से उसी स्थिति में आया और सड़कें अपनी पुनः स्थिति में नहीं आईं, ठीक 49 वर्ष लगे। इसलिए हम क्या पाते हैं, क्या पाते हैं? क्योंकि यदि 7 सप्ताह का अर्थ 49 वर्ष है, तो 1 सप्ताह 7 वर्ष के बराबर हुआ, और 7 × 7 49 है। ठीक यही है, आप यहीं पर हैं। इसलिए अब इसमें अनुमान का कोई विषय नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि हर सप्ताह का अर्थ 7 वर्ष है। आप समझे? ये आइए इसे एक साथ बोलें, 1 सप्ताह 7 वर्षों के बराबर है। अब हम जानते हैं कि हमने इसे समझ लिया, 1 सप्ताह 7 वर्षों के बराबर। यहाँ ठीक इस स्थान में पहला सप्ताह मंदिर को फिर से बनाने के लिए 49 वर्ष, अब ये ऊपर की रेखा यहाँ यहूदी राष्ट्र को दर्शाती है, जैसे कि ये आर पार जा रही है। ये एक समय है, और जब ये नीचे चली जाती है, ये यहूदी राष्ट्र को नीचे ले आकर अन्य जाति के समय में चली जाती है, तब फिर से ऊपर जाती है और इज़राइल को लेकर और आगे बढ़ जाती है। अब अन्य जातियों के लिए कोई विशेष समय नहीं ठहराया गया, केवल ये कहा गया अन्य जातियों का समय। और हम पाते हैं यहाँ तक कि यीशु ने भी उनके लिए समय नहीं ठहराया, क्योंकि हम यहाँ लूका 21:24 में पाते हैं, उसने कहा वे यरूशलेम की दीवारों को तब तक रौंदेंगे जब तक कि अन्य जातियों का, मैं इसका उल्लेख करूँ, मैं स्मरण करके उल्लेख कर रहा हूँ, मैं इसे पढ़ दूँ क्योंकि ये टेप के ऊपर होगा और इसे ठीक रखने के लिए हम निश्चित हो जाना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप मेरे साथ निकालना चाहते हैं संत लूका 21:24, मैंने इसका स्पष्ट अध्ययन किया है जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देश के लोगों में बंधुए होकर पहुँचाए जाएंगे। वो किस विषय में बातें कर रहा है? यहूदियों के। ये मंदिर का नष्ट होना था 70 ईस्वी, और वे सब देश के लोगों में बंधुए होकर पहुँचाए जाएंगे। अब स्मरण रखें, वहाँ बाबुल में ही नहीं, वहाँ रोम में नहीं, परंतु सब देशों में। आज यहूदी वही हैं, सारे देशों में। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तब वहाँ एक ठहराया हुआ समय है, परंतु कोई नहीं जानता कि ये कब होगा। देखिए, ये एक भेद है। देखिए, अन्य जातियों का समय, परंतु यहूदी, तो फिर हम समय नहीं बता सकते कि किस कलीसिया के द्वारा, चाहे ये पिछड़ी हुई या चाहे आगे बढ़ रही है या ये क्या कर रही है, आप इसके द्वारा नहीं बता सकते। परंतु यहूदियों को देखें, वो समय का कैलेंडर है, क्या आप इसे देखते हैं? परमेश्वर ने उनके लिए ठीक सही दिन, घंटा और समय ठहराया है, परंतु अन्य जातियों के लिए कभी नहीं। उसने यहूदियों के लिए किया, इसलिए हम यहूदियों पर दृष्टि रखें, तब हम देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं। अब 7 सप्ताह 49 वर्ष थे। अब यह हमें स्पष्ट हो गया है कि 1 सप्ताह 7 वर्षों के बराबर है, 1 सप्ताह 7 वर्ष। अब हमें बताया गया है आज्ञा के निकलने से लेकर, यहाँ जहाँ परेशानी आती है, अब हमें बताया गया आज्ञा के निकलने से लेकर मसीह के लिए नगर को फिर बनाना, और मसीह क्राइस्ट था, ठीक है, 7 सप्ताह होंगे और 62 सप्ताह 69 सप्ताह बनते हैं, समझे? ठीक है, और 7 बार 69 483 वर्ष बनते हैं। अब आप लिख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं मैं फिर से बताऊं, तो मुझे ये करने में प्रसन्नता होगी। अब हमें बताया गया मसीह के लिए नगर को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर 7 होंगे 7, ये पहले ठीक, यहाँ 7 सप्ताह और 62 सप्ताह मिलाकर 69 सप्ताह बनते हैं, 69 सप्ताह 7 बार 69 483 वर्ष बनेंगे। इसलिए जब तक मसीह, अब हम इस भाग पर आ रहे हैं, यहाँ मसीह तक 483 वर्ष हैं, 483 वर्ष। अब यीशु मसीह यरूशलेम में शान के साथ सफेद गधे की पीठ पर खजूरों के रविवार में अप्रैल 2, 30 ईस्वी में प्रवेश हुआ। यीशु यरूशलेम में 30 ईस्वी में खजूरों के रविवार में सवार होकर गया। और अब 445 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी तक ठीक 475 वर्ष हैं। परंतु जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 69 सप्ताह 483 वर्ष बनाते हैं। अब यहाँ जहाँ परेशानी आती है, देखिए, बाइबल के निशानों से यहाँ समय 475 वर्ष है, और वास्तव में ये 483 वर्ष हैं, 8 वर्षों का अंतर। अब परमेश्वर इसमें चूक नहीं सकता। यदि वो कहता है कि इतने दिन होंगे तो उतने ही दिन होंगे, यदि वो कहता है कि इतना होगा तो उतना ही है, तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं? अब 475 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी जूलियन या खगोलीय वर्ष है, जो कि हर वर्ष में 365 सही 1/4 दिन है। परंतु जब हम उन्हें अपने भविष्यवक्ताई कैलेंडर में कम करें, अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूं, ताकि आप इसे निसंदेह समझ सकें। मैं केवल एक स्थान नहीं लूंगा, मैं पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र लेकर आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि 7 दिन वे 7, 1 सप्ताह 7 वर्ष है बाइबल में। मैंने यहाँ प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय या 11वें अध्याय और 3रे पद में किया है। वे भविष्यद्वक्ता 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे, जो यहूदियों के सप्ताह के बीच में है। तब वे मार दिए जाते हैं और आर्मेगेडोन का युद्ध होता है। तब यदि ऐसा है तो ये फिर ठीक 30 दिन 1 माह में है, समझे? तो फिर ये 1 माह में 31 दिन 28 दिन और आदि आदि नहीं है, ये तो हर बार 1 माह में 30 दिन है। हमारा भविष्यद्वक्ताई कैलेंडर हमारे लिए 360 दिन का है। और अब जैसा कि हम अब वचनों में प्रयोग ला रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल ठीक 483 हैं, 483 वहाँ हैं। यहाँ हमारे पास भविष्यवाणी का सही प्रमाण है, सही सत्य, क्योंकि मंदिर के बनाने के समय से लेकर जब तक नाश नहीं होता, जब उन्होंने मसीह को अस्वीकार करके उसे मार डाला 33 ईस्वी में, जब मसीह मारा गया, बिल्कुल ठीक 483 वर्ष हैं। अब यरूशलम के फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर 7 सप्ताह ठहराए गए थे, जिसका अर्थ 49 वर्ष ठीक बैठते हैं। ठीक है, मसीह के लिए फिर से मंदिर बनाने से लेकर 483 वर्ष थे, इसलिए 434 वर्ष और 434 वर्ष समय 49 बिल्कुल ठीक 483 वर्ष बनता है। ये ठीक बिंदु पर आता है, ठीक उसी दिन, दिन से दिन। आमीन, आप यहीं पर हैं। मसीह प्रधान आएगा, समझे? 7 बार 69 484 वर्ष बिल्कुल ठीक बिंदु पर आता है। इसलिए तब हम सिद्ध रूप में जानते हैं, हम ठीक सही जानते हैं कि वचन सही है, वो यहाँ है। परंतु आप देखिए, ये सब जब परमेश्वर ने जल प्रलय के पहले वाले संसार को जल से नष्ट किया और खगोलीय दिनांक बदल दी, तब रोमी आए और अपना कैलेंडर बनाया, जो कि ऊपर नीचे आदि होता है। और मेरा अनुमान है कि यहाँ तक कि विश्वकोश में, जहाँ मैं पढ़ रहा था, कहिए कि समय की होनी से, भाई कॉलिंस यहाँ इस प्रातः भवन में उपस्थित हैं, केनेथ कॉलिंस, आप जानते हैं कि जब आपने मुझे वो विश्वकोश ढेर सारा भेजा था, आपको स्मरण है, आपने लगभग ट्रक भरकर भेजा था। मैंने सोचा इस संसार में मुझ जैसा नौ सिखुआ इस सब के साथ, आप जानते हैं, कैनी प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा था, वहीं से मैंने ये जानकारियां ली हैं, उसी पुराने विश्वकोश से, समय, और मैं अध्ययन कर रहा था, और बेकी इन्हें अपने विश्वविद्यालय में प्रयोग करती है, मैंने इन्हें अपने अध्ययन में लिया, अपने उसी गुफा वाले कमरे में नीचे, और हम वहाँ नीचे गए, और मैंने लिया, और वहाँ हमने से देखा, और बिल्कुल ठीक पाया, उन सब कैलेंडरों में से होते हुए, और वो समय जो कभी था, समझे? तो हमें ये मिला, वहाँ ठीक 483 वर्ष हैं, उस भवन के फिर से बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर प्रधान मसीह के अस्वीकार के समय तक 483 वर्ष कैलेंडर के द्वारा बनते हैं। अब आप देखिए, हम इसी वाले कैलेंडर का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये कैलेंडर यहाँ प्रयोग किया, तो सारी बाइबल के समय में वो यही प्रयोग करेगा। ये ठीक है ना? परमेश्वर नहीं बदलता। यदि 7 सप्ताह 49 वर्ष होते हैं, तो सप्ताह फिर 49 वर्ष, 1 सप्ताह 7 वर्ष, इसे यही सिद्ध करता है। यदि ये सही स्थान पर ही आता है, तो ये फिर से सही बिंदु स्थान पर आएगा। आमीन। ओ प्रभु, ये मुझे आनंद से झकझोर देता है। ओ, मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि मैं इस विषय में बातें कर रहा हूँ। मैं इसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि जैसे कि केंटकी में एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं किसी को बात करते हुए सुनते पसंद करता हूँ, कौन जानता है वे किस बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं भी यही करता हूँ। उसने कहा, तुम प्रचारकों के साथ यही मामला है, तुम लोग नहीं जानते कि तुम किस बारे में बातें करते हो। ठीक है, मैंने कहा, मैं आपके पूरक की सराहना करता हूँ, परंतु कुछ है जो हम जानते हैं कि हम किस विषय में बातें कर रहे हैं। ओह, ये ठीक बात है। मैं जानता हूँ कि मैं दोबारा जन्म पाया हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं मृत्यु को पार करके जीवन में आ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उससे बातें की हैं। वो मेरे अंदर से होकर मुझसे और मेरे साथ बातें करता है और दूसरे के साथ बात करता है और मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर है। ये ठीक बात है। वो नीचे आने के लिए इतना भला है और अपना चित्र मेरे साथ उतरवाया जिसे कि वैज्ञानिक संसार मना नहीं कर सकता। और मैंने पवित्र शास्त्र को पलटा और देखा कि यह ठीक इस कलीसियाई काल को पूरा कर रहा है, ठीक वही जो घटित हुआ। इसलिए मैं जानता हूँ कि हम यहाँ पर हैं। आमीन। अब हो सकता है हम अनपढ़ हों, हो सकता है हम उच्च शिक्षा प्राप्त लोग ना हों और इस प्रकार की बातें, हो सकता है हम विशिष्ट व्यक्ति ना हों, परंतु हम परमेश्वर को जानते हैं। हम जानते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा है, देखिए, और ये वचन के साथ वचन से मेल खाता है और पवित्र शास्त्र में होता हुआ, तब हम जानते हैं कि ये सत्य है। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। अब स्मरण रहे कि ये भविष्यद्वक्ताई वर्ष 360 दिन एक वर्ष में, हर चीज को देखिए, प्रकृति, यदि आप में से कुछ लोग इसे समझ सकते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं और आदि आदि समझें, 30 दिन थोड़ा देखें और इसे सारी प्रकृति में कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित है, समझे, न कि 31, 30, 28 या कुछ, ये ठीक 30 दिन है हर वर्ष में। ये भविष्यद्वक्ताई कैलेंडर है, ठीक 483 दिन। यहाँ हमारे पास भविष्यवाणी का सही प्रमाण है, 445 वर्ष पहले का बिल्कुल ठीक था। अब जितनी भविष्यवाणी की गई है घटित होनी है और वे 70 सप्ताह अभी तक कभी घटित नहीं हुए, इसलिए ये अंतिम दिनों के लिए छोड़े गए हैं। अब मेरे पेंतिकोस्तल भाई, अब मेरे यहोवा विटनेस के भाई, क्या आपने अनुभव किया? क्या आप जानते हैं कि कहाँ 144,000 प्रकट हुए? क्या आप जानते हैं कि कहाँ प्रकाशित वाक्य के बड़े बड़े अचरज के कार्य हुए? यहूदियों के युग में, ना कि हमारे, इसमें कोई अभिलेख नहीं है, केवल कलीसिया तैयार हो रही है और चली गई। निश्चय ही परमेश्वर की सामर्थ्य हम आश्चर्यकर्म करते हैं और लाभ उठाते हैं, ये हम जानते हैं, परंतु वास्तविक चीज यहाँ यहूदियों के पास थी। मेरा अर्थ वास्तविक कार्य करने की शक्ति, आश्चर्यकर्म हो रहे हैं। 144,000 वहाँ प्रकट नहीं होते हैं, वे तीसरे अध्याय में प्रकट नहीं होते हैं, वे आगे के पवित्र वचनों में हैं। और अब हम देखते हैं कि इन सारी बातों को 70वें सप्ते में, अंत के सप्ताह में घटित होना था। अब यदि उनके 69 सप्ताह हो चुके हैं और बिल्कुल ठीक परमेश्वर के कहे के अनुसार जिए हैं और किया है, तो ये ठीक परमेश्वर के कहे अनुसार ही होगा। तो फिर यहूदियों के लिए एक और सप्ताह की प्रतिज्ञा है। अब भाइयों, केवल तैयार हो जाएं, समझे? देखा, अब हम जरा ध्यानपूर्वक सुने। अंतिम सप्ताह, 7वां वर्ष। अब क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं? यदि आप समझ गए हैं यहाँ तक, तब समझ गए। ये बिल्कुल सत्य है, ये बाइबल है, ये भविष्यद्वक्ताई वर्ष है। अब हम यहाँ तक आकर और हम इन्हें मसीह को अस्वीकार करते हुए पाते हैं। देखा, मसीह के अस्वीकार करने से लेकर अंतिम सप्ताह। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रुककर और इसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। जब उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया, ये जब उन्होंने इस प्रक्रिया में एक प्रकार से यीशु को, एक बचाने वाले को अस्वीकार कर दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। याद रखें, यहाँ बाइबल ने क्या कहा, और वो काटा जाएगा परंतु अपने लिए नहीं, मसीह वो प्रधान। अब सोचिए भविष्यवाणी कितनी ठीक घटित होती है। मैं आपके अंदर इसे बिठा देना चाहता हूँ कि यदि ये भविष्यवाणी ठीक दिनांक पर होती है, ठीक समय, ठीक उसी प्रकार जैसा कहा गया कि होगा, ये दूसरा 7, ये वाला 7 सप्ताह बच गया, 7 वर्ष, बल्कि 7 दिन 7 वर्ष, ये ठीक वचन के अनुसार घटित होंगे। अब स्मरण रखें, वो काटा गया मसीह, यहूदी, परमेश्वर ने उनके साथ व्यवहार करना बंद कर दिया, वे इसके आगे नहीं बढ़े, तब वे रोमी साम्राज्य के द्वारा बिखेर दिए गए। और तब यदि आप मेरे चार्ट पर ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप सब इसे लेकर और बना लें। और आप देखें, यहां जहां मैंने कट्टम का निशान लगाया है, यहां पर उन्होंने अस्वीकार किया था, परंतु समय को इस पर थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया गया था। क्यों? 30, 40, 50, 60, 70, 40 वर्ष पश्चात टाइटस रोमी सम्राट ने इसराइल को, यरूशलेम को नष्ट कर दिया और इन लोगों को समस्त संसार में भगा दिया। आप देखिए, टाइटस ने 40 वर्षों पश्चात, इसलिए वास्तव में यहूदियों का समय जब तक पूरा ना बढ़ा दिया गया, परमेश्वर इनसे व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने उनके साथ जब तक मसीह को अस्वीकार नहीं किया गया वहीं तक व्यवहार रखा। तब जब उन्होंने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो वे चिल्लाए, इसका लहू हम और हमारे संतानों पर हो, और ये तभी से है। परंतु इसके पहले कि वो तितर बितर होते, सुनिए ओ भाइयों, इससे पहले कि वे समस्त संसार में तितर बितर होते, इसमें परमेश्वर ने मंदिर को टूटने में 40 वर्ष लिए और उन्हें समस्त संसार में तितर बितर कर दिया। परंतु परमेश्वर उनसे और व्यवहार नहीं कर सका। परमेश्वर ने उनसे और व्यवहार नहीं किया, वो अन्य जातियों से व्यवहार करने के लिए चला गया। आप ये जानते हैं, अब इसे समझते हैं। अब यहाँ से हम कलीसिया युगों में आरंभ होते हैं, अन्य जातियों का समय। परमेश्वर यहूदियों से दूर है। मेरे मिशनरी भाई, ये यहूदियों के लिए था, एक मूल्यवान प्रिय भाई यही कहीं है। मैं चाहता था कि आप इसे पकड़ें और समझें। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ आकर यहूदियों से व्यवहार करना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर इसराइल से सदा एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है। हम सब ये जानते हैं कि इसराइल एक राष्ट्र है, अन्य जाति लोग हैं, और उसने अपने नाम के लिए अन्य जातियों में से लोगों को ले लिया। हम अभी इसे कुछ मिनटों में लेंगे। परंतु इन सात कलीसियाई कालों में, जिनमें कि हम मसीह के क्रूस चढ़ाने से लेकर कलीसियाई युगों के अंत तक होते हुए निकले हैं, अब हम ये समझ गए हैं कि हम इस सारे समय में थे। अब हम ऐसे स्थान पर आ रहे हैं कि जहां हम सात मोहरों, सात कटोरों, सात तुरहियों पर आ जाएं, और ये सारा चित्र एक साथ है। सारा व्यवहार यहूदियों के साथ है, और पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय है, और बाकी बचे लोग। इस महान समय की पीड़ा, इसमें लाखों अन्य जातियां मरेंगी, वो अस्वीकार की हुई दुल्हन, वो स्त्री वंश के बचे हुए लोग, मूर्ख कुंवारियां, वो इसमें से होकर निकलेगी। ये 70 सप्ताहों के समान स्पष्ट है, और वे इसमें से होकर निकलेंगे। इसलिए यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो अच्छा है, आप इसे ले लें जितनी जल्द आप ले सकें। हम अंत समय में हैं। अब ध्यान दें, सात कलीसियाई कालों पर। अब मैं उनको यहाँ नहीं लूंगा, क्योंकि वे हमारे पास टेप पर हैं, और वे पुस्तक और सब में। वो समय है कि परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा कि इतने इतने दिन और इतने घंटे और इतने वर्ष होंगे। उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसने कहा जब तक अन्य जातियों का समय समाप्त नहीं हो जाता, कहा तब तक, जब तक अन्य जातियों से परमेश्वर व्यवहार करना बंद ना कर दे, दीवारें रौंदी जाएंगी। अब हम इन युगों में होते हुए पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे पास था, और तब परमेश्वर ने आरंभ में मसीह को अस्वीकार करने पर बताना आरंभ किया। परमेश्वर ने यूहन्ना को ठीक ठीक दर्शाया कि अन्य जाति के राज्य में क्या घटित होगा। अब देखिए, यहूदियों के समान हमारे समय की कोई सीमा नहीं है, परंतु हमें चिन्ह मिले हैं, हमारे पास चिन्ह सूचक हैं। ठीक है, परमेश्वर ने यहूदियों के साथ ठीक वैसे ही किया जो उसने कहा कि वो उनमें करेगा, 69 वर्ष, या वो 483 वर्ष थे, परंतु 69 सप्ताह, और एक सप्ताह रह गया, अभी एक सप्ताह ठहराया गया है। अब हम इसे यहाँ लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये अन्य जाति कलीसिया है। अब कितने लोग इसे समझते हैं? अब ये प्रकाशन है जो पहले अध्याय से और तीसरे अध्याय तक हमें लौदीकिया तक ले जाता है। अब हम बिल्कुल ठीक देखते हैं कि कैसे ये सब कलीसिया थी, अपने में कलीसियाई संसार। परमेश्वर ने पापियों को कभी नहीं गिना, उसने केवल जब तक वो बचना ना चाहे। परंतु कलीसियाई संसार सब सफेद था। तब वहाँ निकोलाई आते हैं जो एक संस्था बनाना चाहते हैं, विशिष्ट व्यक्ति उसमें आते हैं। ये नीसिया रोम में था जब उनकी नीसियन सभा हुई, और वे क्या करेंगे? उन्होंने कलीसिया को संस्थागत किया और मसीहों को सताना आरंभ किया। और तब अगली कलीसियाई काल में ये लगभग एक प्रकार से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे वाली मसीहत समाप्त कर दी गई थी। परंतु तब आप लोग जानते हैं कि मैं वापस गया और इतिहास को लिया, नीसियन फादर और प्री नीसियन फादर्स, और सारा इतिहास कलीसियाओं का, और सबसे प्राचीन लेख जो मैं पा सका, और हर उनमें से हर चीज आपको ये सिद्ध करेगी कि वो कलीसिया जिसके विषय में परमेश्वर बात करता है, वो संस्थागत कैथोलिक कलीसिया या कोई और संस्था नहीं है। परमेश्वर जिनके विषय में बात कर रहा था, वे उस युग के वो महान सितारे थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में सिखाया, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, और परमेश्वर के आत्मा के आने के विषय में, और अन्य अन्य भाषाएं बोलना, और भाषाओं का अनुवाद, और चंगाई, आश्चर्यकर्म और चिन्ह। यही वे परमेश्वर के भाग हैं। वो अपना विचार नहीं बदल सकता। कहे ठीक है, कलीसिया के लिए मेरा ये विचार है, और वो प्रेरिताई कलीसिया, और मेरा विचार विशिष्ट व्यक्तियों की कलीसिया है। परमेश्वर बदलता नहीं है, वो अब भी पवित्र आत्मा है, और हम देखते हैं और इस निष्कर्ष पर आते हैं जब हम परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं और वो क्या, और तब उसके वचन को निकाल कर लाते हैं और तब इतिहास को लेते हैं और ये दर्शाते हैं कि ये सही बिंदु पर मार करता है, ठीक दिनांक पर, समय पर, हर चीज जो परमेश्वर ने कही यूहन्ना के द्वारा वो घटित होगी। ये अन्य जाति के युग में घटित हुआ। बिना किसी संदेह की छाया के हम ये स्वयं पाते हैं कि लौदीकियाई युग, हम जानते हैं कि जिसमें हम हैं, हम लूथरन के युग से होते हुए आए, वेस्ली युग से निकलते हुए आए, अब हम लौदीकिया काल में हैं, अंतिम युग, और हम अनुभव करते हैं कि उन प्रत्येक कलीसियाओं में संदेशवाहक था। हमने ये पाया है उसके हाथ में सात सितारे जो कि सात आत्माएं थीं, वहीं परमेश्वर के सम्मुख से निकली, प्रत्येक का एक संदेशवाहक था। और हम आगे बढ़ते हुए बाइबल के द्वारा पाते हैं कि उस संदेशवाहक का स्वभाव कैसा होगा, कि उस संदेशवाहक का स्वभाव कैसा होगा, और इतिहास में से उस प्रकार के स्वभाव को हम ले लेते हैं। और तब जब हम वो व्यक्ति इतिहास में पाते हैं जिसका वो स्वभाव था, तो हम पाते हैं कि उस कलीसियाई काल का वो संदेशवाहक था। तब हम पाते हैं कि आत्मा और उस व्यक्ति ने क्या किया, और हम पाते हैं कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण संत था, संत इरेनियस और वे सब दूसरे, और संत कोलंबा और वे सब व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और पवित्र शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं कि उस प्रकार की आत्मा उस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर था उस समय के लिए, वो वहीं पर है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। भाई मैं नहीं जानता ये मेरे लिए किसी और बात से अधिक अर्थ रखती है। देखिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, स्वयं बोल रहा है। जब मैं परमेश्वर को कुछ कहते हुए सुनता हूँ, मैं कहता हूँ आमीन, ये सत्य है, ये ठीक है, समझे, ये तय हो गया, बस पूरा हो गया, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यही है, ये करता है। भाई परमेश्वर ने कहा है ये इस प्रकार होगा, और हमने इतिहास में पाया और पवित्र शास्त्र के द्वारा हम इस कलीसियाई युग में से पढ़ेंगे ये क्या करेगा, क्या घटित होगा उस कलीसियाई काल के लिए, किस प्रकार का संदेशवाहक था। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को, सार्दिस की कलीसिया के दूत को, थुआथीरा और सब विभिन्न, और हम इतिहास में वापस जाकर उस कलीसिया के दूत को ढूंढते हैं और हम पाते हैं कि वो कौन था, इसलिए तब हम उसे निकालकर उसके नाम इसके नीचे रखते हैं और वे वहाँ हैं। देखिए, हम जानते हैं ये बिल्कुल सटीक है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर था, सदा से था, सदा से रहा है उस संस्थागत धर्म के विरुद्ध। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा निकोलाई, जिनसे मैं घृणा करता हूँ। निको का अर्थ है ईश्वरत्व को जीतना, लेटी है, लेटी कलीसिया, देह, निकाओ का अर्थ है जीतना, जय पाना, दूसरे शब्दों में एक के ऊपर दूसरा, एक पवित्र व्यक्ति बनाना। हम सब बालक हैं, हमारा एक राजा है, वो परमेश्वर है, हमारा एक पवित्र जन है और वो परमेश्वर, आमीन, और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य में है, वही एक पवित्र है। और अब हम नीचे की ओर आते हैं, जब तक हम सुनिश्चित नहीं होते कि यहूदी काल में से निकलते हुए इतिहास के द्वारा, कैलेंडर के द्वारा, परमेश्वर की भविष्यद्वक्ताई वर्ष के द्वारा हमें ठीक 69 सप्ताह मिले। भविष्यद्वक्ताई कैलेंडर का इतिहास पुराने नियम में से और नए नियम में से निकालते हुए, और ये दर्शाया कि दोनों एक समान है। देखा, अब हम आरंभ से ही अन्य जाति कलीसिया पाते हैं और इस अंत के दिन तक, और हम जानते हैं कि हम अंत के दिन में रह रहे हैं। आमीन, आप समझे, यदि हम इस अंत के दिन में रह रहे हैं, इस युग के अंत में, तो फिर हम कहाँ हैं? ध्यान दें, यहाँ पीछे आप देखते हैं कि ये रेखा यहाँ पीछे तक खींची है, जहाँ कि परमेश्वर यहूदियों से व्यवहार करता है या कभी भी यहूदियों से व्यवहार नहीं किया। उनके ऊपर इसे करने के लिए उसे लंबा समय लगा, उनको लेने के लिए उसे 40 वर्ष लगे कि उन्हें उस दशा में लेकर आए जहाँ उसने उन्हें नष्ट कर दिया और राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया। अन्य जातियों के सब दिनों में उसे इन्हें इस दशा में लाना था, इससे पहले कि वो अपने वचन को पूरा करे। देखा मेरा क्या अर्थ है, वे जो इसे समझते हैं आमीन कहें। देखिए, मैं निश्चित होना चाहता हूँ कि आप समझ गए। अब क्या घटित हुआ, अंतिम कलीसिया के ऊपर की ओर देखिए, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अन्य जातियों के दिन समाप्त हो रहे हैं, और पिछले 40 वर्षों से यहूदी वापस यरूशलेम में जा रहे हैं, अपने घर को वापस जा रहे हैं। हालेलुया, देखिए हम कहाँ हैं। मसीह को मारने के पश्चात 40 वर्ष लगे, जब टाइटस ने मंदिर को नष्ट किया और यहूदियों को तितर बितर कर दिया। सारे फिरौनों के हृदय को कठोर करने में 40 वर्ष लगे उस स्थान में, और यहूदियों को उनके देश में वापस निकाल दिए जाने को। परंतु आज वे फिर से अपने देश में हैं और कलीसिया अंत में है। आमीन। ओ, मैं थोड़ा सा पढ़ने का यत्न कर रहा था, मैं नहीं पढ़ सकता। ध्यान दें, यहूदी अपने देश में हैं और वापस आ रहे हैं। यदि आपको डिक्लाइन ऑफ द वर्ल्ड वार मिले, भाग दो, जब जनरल एलबी पहले विश्व युद्ध के पश्चात वो यरूशलेम गया और उस पर अधिकार कर लिया और यरूशलेम ले लिया, और वे मसीही सिपाही अपने सिरों से टोपी हटाकर उस यरूशलेम में चल रहे थे, और एलएनबी ने बिना बंदूक चलाए आत्मसमर्पण कर दिया, या उन्होंने एलबी को आत्मसमर्पण कर दिया तुर्कियों ने। और तब से परमेश्वर ने मसलोनी, हिटलर, स्टालिन, इन सब के हृदयों को कठोर करना आरंभ कर दिया कि इन सब राष्ट्रों में उन यहूदियों से घृणा करें। और तब वो बड़ा पक्षी नीचे उतरा जो कि ईस्टर्न एयरलाइन या पैन अमेरिकन एयरलाइन कहलाता है, या जो कुछ भी था, मेरा विश्वास है कि ये TWA कहलाता था। ये लाइफ पत्रिका में था, मेरा विश्वास है ये लुक या लाइफ थी, मेरा विश्वास है ये लाइफ थी पिछले 3 या 4 वर्ष। और परमेश्वर यहूदियों को उनके देश में वापस भगा रहा था, जिससे कि वो 2000 वर्षों से बाहर थे, जबकि वो अन्य जातियों को तैयार कर रहा था। और अब अन्य जातियों ने मसीह को कलीसिया से बाहर निकाल दिया है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अनुसार। वो अपनी कलीसिया में वापस भी नहीं आ सकता, उसके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, वो अस्वीकार कर दिया गया है। और ये उठा लिए जाने का समय है, यहाँ से होते हुए तब छुड़ाए हुए ये छोटे बिंदुओं के समान, ये सारे संत पुनरुत्थान में जा रहे हैं। आप देखिए, हम सब यहाँ एक साथ मिलेंगे, और बाइबल कहती है हम जो जीवित हैं और प्रभु के आगमन तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कदापि आगे ना बढ़ेंगे। सब स्थानों से यहाँ, यहाँ और यहाँ से। पेंटिकोस्तल भाई, कैसे इसे यहाँ लुदिकिया कलीसियाई युग में लागू कर सकते हैं? वे वहाँ हर युगों के लोग सोते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम जो जीवित हैं यहाँ थोड़े से बचे हुए लोग तब तक जीवित रहते हैं प्रभु के आगमन पर, उन सोते हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरई फूकी जाएगी और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, और हम उनके साथ मिलकर उठाए जाएंगे। आमीन। उनके साथ यहाँ हम ठीक यहाँ मिल रहे हैं प्रभु के साथ हवा में मिलने के लिए, और आप कहाँ हैं? यहाँ इसी स्थिति में। मसीह कहाँ काटा गया? ठीक वहीं जहाँ वचन ने कहा। कहाँ पर 70वां सप्ताह आरंभ होगा? ठीक इस कलीसिया के काटे जाने के पश्चात, तब यहूदियों की ओर परमेश्वर लौटेगा। क्या आपको स्मरण नहीं? जैसे ही कलीसिया जाती है तब यहूदियों की पकड़ हो जाती है, वे अंदर आते हैं। परंतु पहली अगली बात इस क्रम में सामर्थ्य राष्ट्र नहीं, अन्य जातियों में बेदारी नहीं। अगली बात जो इस क्रम में है, परमेश्वर के राज्य का आना, मसीह का आगमन। अब यदि आप चाहें तो हम पीछे डेनियल के 2 अध्याय के 34वें और 35वें पद में जा सकते हैं। जब डेनियल को दिया गया था 2 अध्याय और 34 और 35, जब डेनियल को दर्शन दिया गया कि उसके लोगों के दिन पूरे हो गए और एक निश्चित समय, और उसने अन्य जातियों को अंदर आते हुए देखा और इस महान चट्टान का दर्शन देखा, या इस बड़ी मूरत को जिसका सिर सोने का और सीना चांदी का। अब ध्यान दें, ये सख्त होता जा रहा है, चांदी से सोने से अधिक सख्त है। अगला, लोहे की जांघें या पीतल की जांघें, और तब लोहे की टांगें और पैर। परंतु पंजे 10 पंजे, और वे पंजे लोहे और मिट्टी के। और उसने कहा, जितना भी तूने देखा कि लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिलेगा, ये बटे हुए राज्य एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, परंतु वे अपने बीज आपस में मिलाएंगे और दूसरे की शक्ति को तोड़ने का प्रयास करेंगे। समझे? अब क्या घटित हुआ? सोने का सिर नबूकदनजर था, उसने जो इसका अनुवाद किया, कहा दूसरा राजा आएगा और तुझसे घटिया होगा, जो कि दारा था, मेदे फारसे का, अन्य जातियों के राज्य को ले रहा है। अगला जो आता है, जो मेदे फारसे के पश्चात है, क्या था? यूनान का सिकंदर महान और आदि आदि। यूनानियों ने राज्य ले लिया। तब यूनानियों से किसने लिया? रोम ने। और किसने तब से अन्य जातियों पर राज्य किया? रोमियों ने, रोमी। अब ये लोहा था, तब ध्यान दें, रोम अंत तक रहता है क्योंकि ये पंजों तक अंत तक जाता है। और उसने मिट्टी को देखा, रोम की शक्ति इन सब देशों में पहुंचती है और रोम की शक्ति स्वर्ग के नीचे प्रत्येक राष्ट्र में है और रोम की शक्ति आकाश के नीचे प्रत्येक राष्ट्र में है। संसार में केवल एक मनुष्य है जो युद्ध को रोक सकता है या आरंभ कर सकता है, एक शब्द के कहने के द्वारा, वो पोप है। यदि वो ये कहे कोई भी कैथोलिक हथियार नहीं उठाएगा, भाई तो फिर ये तय हो गया। आप चाहे जो कहते रहें, संसार के मसीहों का सबसे बड़ा भाग कैथोलिकों का है, समझे? ठीक है, उसे एक शब्द कहने दे, बस वही है। जैसे कि वे यहाँ कहते हैं, कौन, हम इसमें बाद में जाएंगे, कौन पशु से लड़ने योग्य है, उसके समान कौन बोल सकता है, ये कौन कर सकता है? तो आओ हम पशु की मूरत बनाएं, ये नामधारी कलीसियाओं का संघ है, उसकी मूरत बनाएं, समझे? नामधारी मिलकर एक संघ, जो कि वे कर चुके हैं। ओ, हम केवल अंत में हैं मित्रों, बस यही है, इसमें हम लोग अंत में हैं, समझे? आओ हम पशु की मूरत बनाएं, बिल्कुल उसी के समान, एक मूरत किसी के समान दिखाई पड़ती है, देखा? अब हम अंत समय में हैं। अब इस काल के अंत में ध्यान दें, अब डेनियल के दूसरे अध्याय में 34 और 35 पद, वो इस मूरत को ध्यान पूर्वक देखता है, संघ को, और वो तब तक देखता है जब तक एक पत्थर पहाड़ से बिना हाथों के काटे निकल कर आता है और ये लुढ़कता हुआ नीचे आता है और मूरत के पैरों पर लगकर और उसे तोड़ देता है। अब ये कभी भी उसके सिर पर नहीं लगता, उसके पैरों पर लगता है और वो उन दसों उंगलियों का अंत था। क्या आपने देखा ठीक यहाँ श्री आइजनहावर के निकलने के पहले राष्ट्रपति पद पर प्रोटेस्टेंटों का अंतिम, जो कि मुझे संदेह है कि आगे कोई और भी होगा, परंतु जब केवल दर्शाने के लिए ताकि लोग जाग सकें, जब वो मिला वहाँ उस अंतिम सभा में, वो रूस से मिला, वहाँ पांच पूर्वी साम्यवादी राष्ट्र उपस्थित थे, पांच पश्चिमी राष्ट्र। श्री ख्रुश्चेव पूर्वी राष्ट्रों के अध्यक्ष थे, श्री आइजनहावर पश्चिमी राष्ट्रों के अध्यक्ष थे और ख्रुश्चेव, जैसा कि मैं समझता हूँ, मुझे बताया गया है कि रूसी भाषा में ख्रुश्चेव का अर्थ मिट्टी होता है और आइजनहावर का अंग्रेजी में अर्थ होता है लोहा। यहाँ ये आपके लोहा और मिट्टी नहीं मिल सकते, और उसने अपना जूता उतारकर और मेज पर पटका और आदि आदि, ये नहीं मिलेगा। परंतु ये इन साम्राज्यों के दिनों में था कि एक चट्टान बिना हाथ के काटे पहाड़ में से आकर मूरत के पैरों पर लगती है। अब पहाड़ पर से कटा पत्थर पहाड़ का होना चाहिए, ये पत्थर के पहाड़ में से कटकर निकला। अब क्या आपने ध्यान दिया? अब सेवक भाइयों और भाइयों और बहनों इस समस्त संसार के, मेरी समझ में पहली बाइबल जो लिखी गई, परमेश्वर ने उसे आकाश में लिखा क्योंकि उन्हें ऊपर देखना चाहिए और देखें कि वो वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर है, कि परमेश्वर उनके ऊपर है। और यदि आप नक्षत्रों में ध्यान दें, अब आप में से कोई इसमें ना जाए, आप यहाँ बाइबल के साथ बने रहें, समझे? परंतु ये नक्षत्र, सबसे पहले मैं समझता हूँ नक्षत्र में कन्या राशि आती है, राशियों में सबसे अंत में सिंह का सदस्य है, ये मसीह का कन्या के द्वारा पहला आगमन है और दूसरा आगमन सिंह यहूदा के गोत्र का, समझे? तब कर्क युग में जाते हैं और नीचे राशियों में से होते हुए, अब हम पाते हैं कि वहाँ एक और लिखी हुई है या दूसरी वाली रखी है और वो पैरामिड था। क्या आपने पैरामिडों में ध्यान दिया? ये कैसे आरंभ हुए? नीचे की ओर से चौड़ा पहाड़ के समान, जो किसी ठोस पत्थर का बना हुआ है, और ये ऊपर चोटी तक जाता है, परंतु उस पैरामिड पर चोटी कभी नहीं थी, मिस्र का वहाँ वो बड़ा पैरामिड। यदि आपके पास डॉलर का नोट है तो उसे जेब से निकालें और उसे देखें, और आप इस पर अमेरिकन मोहर पाएंगे और इसके दूसरी ओर नीचे पैरामिड है और पैरामिड के ऊपर चोटी का पत्थर, परंतु उसके स्थान पर एक बड़ी आंख है और इस पैरामिड के नीचे ये महान मोहर कहलाती है लिखा है। वो अमेरिकन उका महान मोहर क्यों नहीं है? ये परमेश्वर की मोहर है, स्मरण रहे। हम एक छोटा गाना गाया करते थे, प्राणों के सच्चे निवास पर जो राह जाती है, एक आंख जो आपको देखती रहती है, हर कदम जो आप उठाते हैं ये बड़ी आंख जागती है, एक आंख जो आपको देखती है, ये ठीक बात है। स्मरण रखें, हमारा एक छोटा सा उत्सव हुआ करता था, हम कहते हैं यदि आप चोरी, बेईमानी और झूठ बोलते हैं और कलीसिया में आप गवाही देते हैं, एक आंख आपको देखती है। अब ये महान मोहर, अब हम जानते हैं और मैं इसे नहीं समझता पैरामिड के नापतौल को, परंतु मैं आप लोगों को पिछली कुछ शिक्षाओं में बता रहा हूँ जो आ रही हैं, ताकि आप देख सकें ये ठीक आगे एक साथ बढ़ रहा है। पैरामिड कलीसिया को दिखाना आरंभ करता है, नीचे से चौड़ा, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आता है ये कीप के आकार में बदल जाता है। अब हम पाते हैं ये ऊपर चोटी तक जाता है और उन्होंने इसे कभी भी पूरा नहीं किया। क्यों? क्यों? मुझे आश्चर्य होता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि चोटी के पत्थर को अस्वीकार कर दिया गया, उन्होंने अस्वीकार किया था। अब कलीसिया युग पर ध्यान दें, ध्यान से सुनिए और इसमें चूकिए नहीं। कलीसिया युग सुधार से आरंभ हुआ लूथर, वहाँ पीछे जहाँ नेव का पत्थर रखा गया था जो कि प्रेरितों की शिक्षा है। तब हम पाते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया, एक युग से दूसरे युग में कलीसिया हर बार अल्पसंख्यक होती गई, और जब तक कि वो ऐसी नहीं हो गई, लूथर ने न्यायोचित होने को प्रचार किया। तब केवल अपने को मसीही स्वीकार करना आपको मृत्युदंड था, शहीद होने के दिन। अब हम पाते हैं कि वेस्ली के दिनों में यदि अपने आप को आपने मसीह स्वीकार किया तो आप पवित्र शोर मचाने वाले थे। उस न्यू मेथोडिस्ट में जब वेस्ली आया तो लोग बाहर निकल कर आए, और यहाँ अमेरिका में एसबरी की सभा थी, उनके इतिहास को पढ़ रहा था जहाँ वे विद्यालयों में किया करते थे, उनकी कलीसियाएं उन्हें नहीं लेती थी, और अंत में वे एक ऐसे स्थान में आ गए कि जब तक उन पर पवित्र आत्मा न उतरा और वे फर्श पर गिर गए, उन पर पानी डाला, पंखा किया, सोचा कि वो बेहोश हो गए। और मैं स्वयं उनकी सभा में था अपने 50 वर्षों में, और मैंने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ में इस प्रकार गिरते देखा, और वे उनके मुख पर पानी डालते और आदि आदि, बहुत वर्षों पहले वे फ्री मेथोडिस्ट, वो सताया जाना था। अब जब वेस्ली वाला युग दिया जा चुका, पेंटिकॉस्टल युग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ आया। देखिए आप हर समय आकार में आ रहे हैं। अब स्मरण रखें, चोटी का पत्थर अभी उस पर नहीं है। क्यों? उन्होंने कलीसिया को ठीक वही आकार दिया, यानी पिरामिड का आकार, कि चोटी का पत्थर ठीक बैठे, परंतु चोटी का पत्थर अभी नहीं आया। ओ देखिए मैं कहाँ हूँ, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? अब सेवकाई लूथर से जब तक पेंटिकॉस्टल अल्पसंख्यक नहीं आ गए यहाँ तक, यही कारण है कि ज्योति लगभग समाप्त हो गई है इस युग में, वहाँ उस चार्ट में। ये पेंटिकॉस्टल युग है, पेंटिकॉस्टल, पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन नहीं, क्योंकि उन्होंने ठीक लोदेसिनियों की तरह करा, वे लोदेसियन हैं, उन्होंने संस्थागत निकोलाइयों के समान किया, परंतु समस्त संसार की कलीसिया एक स्थान पर आकार में आ गई कि उनके मध्य में एक सेवा आने वाली है, ठीक यीशु मसीह की सेवकाई के समान। अब उन्हें क्या मिला? उन्होंने चीजों को उस स्थिति में बदल दिया। अब अगली बात क्या थी? ये पैरामिड का ठुकरा हुआ पत्थर पहाड़ में से, बिना किसके हाथों के, परमेश्वर ने इसे भेजा। क्या आप इसे देखते हैं? ठुकराया हुआ, वो अस्वीकार किया गया पत्थर, इसका सिर है, वो चोटी का पत्थर सिर है, और वही जिसको उन्होंने अन्य जाति युग में ठुकरा दिया, मसीह है, और मसीह काट कर यहाँ किसी के बदले में, यानी परमेश्वर के पुत्र के बदले में नहीं रखा गया, या कलीसिया का कोई महान विशिष्ट व्यक्ति, वो पवित्र आत्मा है, और पैरामिड की चोटी मसीह का आगमन होगी। क्या आप इसे देखते हैं? अब क्योंकि वे आकार में हैं, देखिए मैंने कहा इसका आकार पैरामिड के समान बनाया। संतों का जी उठना, महिमा में चलते हुए जाना, आप समझ गए? मसीह चोटी का पत्थर, अस्वीकार किया गया पत्थर, आंख सबको देखते हुए, बिल्कुल ठीक जैसे बाइबल बताती है। और डेनियल ने कहा उसने इस अन्य जाति के युग को जब तक वो पत्थर पहाड़ में से निकलकर नहीं आया उसे देखा, वो हाथों के द्वारा काटा हुआ नहीं था। उन्होंने पिरामिड पर कभी भी चोटी का पत्थर नहीं रखा। यह मनुष्य के हाथों के द्वारा काटा हुआ नहीं था, यह परमेश्वर का हाथ है जिसने पत्थर काटा। आप देखते हैं ये, और इसने क्या किया, उसने मूरत के ठीक पैरों पर वार किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और धूल में बदल दिया। हालेलुया। उस पत्थर के आने के समय में क्या हुआ, कलीसिया महिमा में चली गई, उठा ली गई, क्योंकि अन्य जातियों का समय समाप्त हो गया। परमेश्वर ने इसे समाप्त कर दिया, उस पत्थर का आगमन। यहाँ पर इस आराधनालय में कुछ लोग आया करते थे, एक साधारण व्यक्ति और उसकी पत्नी। वे बाइबल लेकर वहीं रख दिया करते थे और वे साथ साथ गाते रहते थे, ओ मैं उस चट्टान की राह देख रहा हूँ जो बाइबल में लुढ़क रहा था, बाइबल में लुढ़क रहा था, जाओ उसे आसपास ढूंढो, समझे, उस चट्टान की राह देख रहा हूँ जो लुढ़कता हुआ बाइबल में आया। वहाँ वो है मसीह, वो पत्थर है, वो पुरुष से उत्पन्न नहीं हुआ, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। वो उस कलीसिया के लिए आ रहा है जो फिर से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुई है, क्योंकि उस चोटी के पत्थर की सामर्थ एक चुंबक के समान सारी कलीसिया कालों में चलती है। मुझे स्मरण है जब मैं यहाँ हुआ करता था और उस समय उस कारखाने को देख रहा था जहाँ वे सब चीजें बनाया करते थे, और तब वो छीलन आदि पड़ी रहती थी और उन्होंने इसे साफ कर दिया, और वो बड़ा पत्थर आया और इसे उठा लिया, वो बड़ा चुंबकीय पत्थर, और उस सबको ऊपर उठा लिया क्योंकि वो उससे चुंबकीय हो गया था। हमें चोटी के पत्थर के साथ चुंबकीय हो जाना चाहिए। वो चोटी का पत्थर पवित्र आत्मा मसीह है, और हम में से प्रत्येक में पवित्र आत्मा का चुंबक है। जब वो पत्थर मूरत से टकराता है तो कलीसिया इससे भाग जाएगी, वापस महिमा में उठा ली जाएगी, संतों के ऊपर उठाए जाने में, जब वो उस दिन चली जाती है। अब यहाँ देखें, हम पाते हैं कि अब यहूदी लगभग 40 वर्षों से वापस जा रहे हैं, लगभग उतना ही समय जितना कि समय उन्हें वहाँ से भगाने और मंदिर को नष्ट करने में लगा था। उन्हें वापस आने में लगभग 40 वर्ष का समय लगा था, जब तक उन्होंने दूसरा मंदिर फिर नहीं बनाया। देखिए, हम अपनी यात्रा के अंत में हैं। ठीक है, यदि अन्य जाति, अब हम लेते हैं, हम कलीसिया देखते हैं, पत्थर का आगमन। आइए अंतिम काल लें, हमने देखा, अब हम देख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, एक मिनट, हम देखेंगे। और वो प्रधान जो आने को है, जो कि मसीह विरोधी है, वो यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा, और डैनियल 7 में या 927, और सप्ताह के बीच में 3.5 वर्षों में पशु अपनी वाचा बांधेगा। मैं इसे थोड़ी देर बाद में लेना चाहता हूँ, वो वाचा हम छोड़ना चाहते हैं, मैं यहीं से आरंभ करना चाहता हूँ। प्रत्येक अन्य जाति के काल ने पूरी सफलता के साथ अपने संदेश के दूत को सिद्ध किया, और क्या घटित होगा, ये युग यहाँ महिमा में काल है। अगला काल, वहाँ ये कहा गया कि एक शिक्षा होगी या कुछ ऐसा आएगा, निकोलाइयों की कहावतें। तब अगली चीज, एक शिक्षा आती है, तब निकोलाइयों की कलीसिया का विवाह आता है, और संतों का सताना। हर बात उसी प्रकार से हुई। हम अगले वाले पर आते हैं, केवल थोड़ा सा उजियाला आरंभ होता है, आपको थोड़ी सी सामर्थ मिली, तेरे पास एक नाम है कि तू जीवता है परंतु तू मरा हुआ है, जो कुछ तेरे पास है उसी को मजबूत बनाए रख, ऐसा ना हो कि मैं आकर तेरे दीवट को हटा दूं। तब इसके पश्चात वेस्ली अपने युग के साथ आता है, हम ठीक देखते हैं क्या, वेस्ली के युग को, ये क्या कहलाया, फिलेडेल्फिया, प्रेम का महान युग जैसा कि कभी नहीं था, फिलेडेल्फिया युग ठीक था, जॉन वेस्ली के समय में था। जब वो चला गया, पेंतिकोस्तल अंदर आया और ये गुनगुना था। तब हम पीछे जाकर पाते हैं कि पेंतिकोस्तलों के पास किस प्रकार का संदेश आएगा अंत में। याद रखें, प्रत्येक युग के अंत में आया, संत पौलुस अंत में आया, बाकी भी अंत में आए, संत इरेनियस और वे बाकी सब। एक का युग दूसरे के युग में परस्पर व्याप्त करता है और उसे लेता है, और दूसरे युग में उसके साथ चला जाता है। देखा, अब हम इस युग में पाते हैं कि एक सितारा है, जैसे कि हम वहाँ हैं, हमारे पास एक सितारा दूत है, हमारे पास एक संदेश है जो कि इस युग में आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग इसे अस्वीकार करते हैं, कुछ इसे स्वीकार करते हैं, और इस युग का दूत एलिया की सामर्थ्य में आना था, ये ठीक बात है, और उसे बालकों का विश्वास पूर्वजों की ओर फेरना था। पेंतिकोस्तल के जो बचे हुए हैं वापस सच्चे प्रेरिताई विश्वास पर लाना। अब सच्चा प्रेरिताई विश्वास, यदि आप इसे प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि वहाँ कभी भी एक बार एक भी व्यक्ति ने कभी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम वाला बपतिस्मा नहीं लिया। वहाँ कभी भी उन पर छिड़काव नहीं किया गया। वहाँ ऐसी कोई बात जो आज हमारे पास चल रही है, पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनके पास सच्चे प्रकटीकरण और परमेश्वर का आत्मा उनके मध्य में था। वो असफल न होने वाला परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में कार्य कर रहा था। ये व्यक्ति जिसे आना था, बल्कि ये संदेश जो आना था, एलिया के समान होना था। एलिया को तीन बार आना था। अब आप कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो व्यक्ति था। यदि आप ध्यान दें, यीशु ने कहा मलाकी तीन का दूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, ना कि मलाकी चार का। देखो, मैं अपने आगे आगे एक दूत भेजता हूँ। मैं सोचता हूँ मत्ती 11:6, वहाँ मत्ती 11 अध्याय के आसपास आप इसे पाएंगे। अब परंतु इन अंतिम दिनों में एलिया का आत्मा लोगों के मध्य में आना है और उसे वही कार्य करने हैं जो उन्होंने पहले किए थे। उसका स्वभाव वैसा ही होगा। कलीसिया का स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल ठीक एक ही बात होगी। और ये संदेश बाहर जा रहा है और लोग उससे घृणा करेंगे। वो अलंकृत महिलाओं से घृणा करेगा जो भी खराब वाली हैं, जंगलों से प्रेम, मौजी, हर समय परेशान, जैसे एलिया था और जैसे यूहन्ना था। हमने इन सब बातों को घटित होते हुए देखा है। यदि हमारे पास संदेश था, हमने मसीह को अस्वीकार होते देखा। आपको इन संस्थाओं से संबंधित होना ही होगा या आप उनमें नहीं मिल सकते। इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया, समझे? मसीह उनके मध्य में कार्य नहीं कर सकता। आप क्या हैं? एक मसीही। आप कौन सी नामधारी कलीसिया से संबंधित हैं? मैं किसी से भी संबंधित नहीं हूँ। हम आपको प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, वो ठुकराया हुआ है, ठीक है? देखिए, ठुकराया हुआ। ऐसे ही एलिया ठुकराया हुआ था और ऐसे ही यूहन्ना ठुकराया हुआ था। परंतु उन्हें किसने ठोकर लगाई? क्या उनके संदेश को ठेस लगी? उन्होंने कहा, ओ तुम हटीले। उन्होंने ये उन पर डाल दिया। उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की, वे आगे बढ़ गए। और परमेश्वर का संदेश, चाहे कोई कुछ कहे, आगे बढ़ जाएगा, देखिए, जगत के अंत तक। और अब जो कुछ ठाना गया है वो उंडेला जाएगा और हम अंत में हैं। अब हम स्वयं पाते हैं, पहले महायुद्ध के बाद से अब 40 वर्षों में यहूदी अपने देश को वापस जा रहे हैं। इसराइल जब तक अपने देश में नहीं होता, परमेश्वर उससे कभी व्यवहार नहीं करता। अब आपको स्मरण है, वे यहूदी जो दूसरे राष्ट्रों में थे, जब वे वापस जाने लगे और लूक पत्रिका ने इस पर लेख छापा, मैंने किसी अखबार में से एक भाग पढ़ा, किसी धार्मिक पत्रिका में से, जब वे हवाई जहाज जब उन्हें यहूदियों को ईरान से लेने गए, मैं नहीं जानता वे सब कहाँ थे, बस इधर उधर छितरे हुए। अब वे सच्चे यहूदी हैं, वे जिन्हें कभी अवसर नहीं मिला था। अब भाई, यहाँ आपके 144,000 हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 11 में आएंगे तो आप इन्हें देखेंगे। उसने कहा 12 गोत्र हैं, गाद का, 12 गोत्र अशेर के, 12 गोत्र रूबेन के, 12 गोत्र, और वे सब कहाँ खड़े थे? सय्योन पर्वत पर। यहूदी अपने देश में हैं, वे वहाँ थे। वे वॉल स्ट्रीट की वो धूर्तों की टोली नहीं थी। नहीं श्रीमान, ये वास्तविक यहूदी थे। और जब ये बूढ़ा रब्बी, उसने वहाँ खड़े हुए उस हवाई जहाज को उतरते हुए देखा, वे यहूदी, आप इसे पत्रिका में पढ़ें, वे अब भी लकड़ी के हल की जुताई कर रहे थे। और जब उन्होंने वो चीज नीचे उतरती हुई देखी, वे उसके आसपास नहीं गए। वो बूढ़ा रब्बी वहाँ खड़ा हुआ और बोला, स्मरण कीजिए, हमारे भविष्यवक्ता ने कहा, जब हम अपने देश को वापस जाएंगे तो हम उकाब के पंखों पर ले जाए जाएंगे। राष्ट्र टूट रहे हैं, इसराइल जाग रहा है, वे चिन्ह जो भविष्यद्वक्ता ने पहले बताए, हमारा भी 17वें सप्ताह को उनके लिए पहुंचना तय है। मैं स्वयं वहाँ खड़े हुए सोचता हूँ, जब भाई पेत्रुस ने उन्हें छोटे छोटे नए नियम वहाँ भेजे और वे उन्हें पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है, यदि यही मसीह है तो हम उसे भविष्यद्वक्ता के चिन्ह करते हुए देखना चाहते हैं। यदि वो मरा नहीं, वो जीवित है। वे कहते हैं कि वो फिर से जी उठा है, वो अपनी कलीसिया में रहता है, तो हम उसे भविष्यद्वक्ता वाले चिन्ह करते हुए देखें और हम उसका विश्वास करेंगे। यहूदी सदा विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि मसीह भविष्यद्वक्ता था। और जब मैं वहाँ भाई एर्गन ब्राइट के यहाँ खड़ा था, उस दिन उस स्थान पर वे यहूदी वहाँ खड़े हुए कह रहे थे, हमारे यहाँ हमारे लोगों में आओ। मैंने कहा, अवश्य मैं आने के लिए प्रसन्न होऊंगा। एकदम से निर्णय ले लिया। मैं काहिरा मिस्र पहुँचा। उस रात्रि जब मैंने हवाई जहाज को उतरते हुए देखा, इससे मुझे याद आया। इसलिए जब हम वापस चले और मेरे पास इसराइल जाने के लिए टिकट था, वे मुझसे मिलने वाले थे। मैंने कहा, जाओ जाकर कुछ हजार अगुओं को इकट्ठा करो, उन्हें कहीं चौरस स्थान में ले आओ, तब हम देखेंगे कि वो अभी भविष्यद्वक्ता है कि नहीं। आमीन। ठीक है, हम देखें कि वो क्या करेगा। ओ ये सब उनके हाथों में था, वे यही चाहते थे। यदि वे इसे देख सकते तो वो इसका विश्वास करते। इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ काहिरा में उतर गया और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। डॉन के पास मेरा टिकट था, पुकार के लिए लगभग 20 मिनट थे। किसी चीज ने कहा अभी नहीं, अन्य जातियों के पाप का प्याला अभी नहीं भरा, एमोरियों का प्याला अभी नहीं भरा, वहाँ से अलग हटो। मैंने सोचा हो सकता है मैंने ये कल्पना करी है, और मैं वहाँ पीछे जहाज के खड़े होने के स्थान में पीछे गया और प्रार्थना की, कहा वहाँ से अभी अलग रहो। तब मैंने अपना टिकट लिया और किसी जगह चला गया। मैं नहीं गया क्योंकि अभी समय नहीं आया था। अब किस समय परमेश्वर उन यहूदियों को अनुमति देगा कि उनसे फिर व्यवहार करना आरंभ करे, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं नहीं जानता, कोई भी ये नहीं जानता। परंतु सुनिए, यदि इसराइल अपने ही देश में पहले से ही है तो ये सब तैयार है। सारे पत्थर चुन लिए गए हैं और सिंचाई पानी और हर चीज जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उन्हें वहाँ कुएं आदि मिले और बड़े बड़े खुले हुए सोते, वो स्थान जो आपने इतना सुंदर कभी नहीं देखा। उन्होंने वहाँ नगर बसाए, उनके पास सिंचाई साधन है, उनके पास संसार की सबसे अच्छी भूमि है, और हम पाते हैं कि वहाँ मृत सागर में वहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में रसायन है जो संसार को खरीद लें, समझे। हर चीज उनके हाथ में आ गई। उन्होंने ये कैसे किया, क्योंकि हिटलर का हृदय कठोर किया गया था, मसलोनी का हृदय कठोर किया गया था, जैसे कि फिरौन का हृदय कठोर किया गया था, और उन्हें उस देश में वापस खदेड़ा गया, और 40 वर्षों से वे अपने उस देश में वापस आ रहे हैं। वहाँ वे व्यवस्थित होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य जाति कलीसिया लुदिसिया में है, लुदिसिया युग के अंत में। यदि यहूदी पहले ही अपने देश में है और अन्य जाति में प्रेरितवाद पहले ही आ चुका है, और हमारे पास जैसा राष्ट्रपति है, जैसा टूटा हुआ राष्ट्र हमारे पास है, हमारे पास एटम बम उन स्थानों में लटके हुए हैं, हमारे पास गुनगुनी कलीसिया है, हमारे पास कलीसिया है जो एक साथ आपस में मिले हुए हैं, हमारे पास यीशु मसीह की सेवकाई का नमूना है कि उस पत्थर को पकड़ें जब वो आता है, होने के लिए क्या बचा है, ये किसी भी मिनट हो सकता है, अब कुछ नहीं बचा, हम अंत समय में हैं। ओ महिमा हो। मैं नहीं जानता कि मैं उस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहा हूँ या नहीं, परंतु मैं केवल ये चाहता हूँ कि मैं जो भी हो आपको इसका भाग दिलवा दूँ। सुनिए, अब कितने लोग देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि कहाँ वचन इस 70 सप्ताह को सिद्ध करता है कि वो 49 वर्ष थे, क्या आप देखते हैं कहाँ 62 सप्ताह 434 वर्ष है, आप देखते हैं कि 69 सप्ताह तब कहाँ थे, ये क्या था 800 483 वर्ष, इस समय तक 483 वर्ष, आप देखते हैं कहाँ प्रधान काटा गया था। देखिए, आप उनके लिए 40 वर्ष ले रहे हैं कि यहूदी अंततः अपने स्थान में आ जाएं जहाँ परमेश्वर ने कहा। यहाँ देखिए, जहाँ अन्य जाति युग हर चीज में से होता हुआ आया जो हमने कहा कि ये करेगा, जहाँ हमने नहीं कहा कि ये करेगा, जो बाइबल ने कहा कि वो ये करेगा, जो बाइबल ने कहा कि वो ये करेगा, इस युग के अंत तक आ गया, और पिछले 40 वर्षों से यहूदी अपने देश में वापस आ रहे हैं, और जो परमेश्वर ने यहाँ किया ठीक उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। वे उस मार्ग से चले गए और इस मार्ग से आ गए, और इसराइल वापस अपने देश में है। अब परमेश्वर उनका अंतिम सप्ताह कब आरंभ करने जा रहा है, कब, ये आज हो सकता है, ये सूर्य अस्त होने के पहले आज रात्रि परमेश्वर इसकी घोषणा करेगा। ये कब होगा मैं नहीं जानता, मैं आश्चर्यचकित हूँ, परंतु मैं अभी कुछ मिनटों में आपके पास कुछ लाने जा रहा हूँ, और नहीं जानता कि आप विश्वास करेंगे या नहीं, परंतु जो भी है मुझे ये कहना है, मैं विश्वास करता हूँ। हम अपने देश में हैं, यहूदी अपने देश में हैं, हम युग के अंत में हैं, उठाए जाने के लिए तैयार हैं। रैप्चर आता है और कलीसिया ऊपर चली जाती है, हम उसे मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाते हैं। हम सब ये जानते हैं, वो पत्थर जो पहाड़ से काटा गया था वो आने के लिए किसी भी समय तैयार है, और जब वो आता है तो वो क्या करता है, ये अन्य जाति के युग को समाप्त कर देता है, ये पूरा हुआ, और परमेश्वर उनसे व्यवहार करना समाप्त कर देता है। जो मलिन है वो मलिन बना रहेगा, जो पवित्र है पवित्र बना रहेगा। देखा, तब वो क्या करता है, वो पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया को ले लेता है। मलिनता क्या है, ये मूर्ख कुंवारियां, वे जो न्याय में आती हैं। यहाँ पर जब हम इस पर आएंगे तो इसे दूसरे चित्र में लेंगे, जहाँ वो श्वेत सिंहासन के न्याय पर आती हैं और छुड़ाऊओं के द्वारा न्याय किया गया। पौलुस ने हमें बताया कि मामले को अदालत में ना ले जाएं, क्योंकि संत इस पृथ्वी का न्याय करेंगे। ये ठीक बात है, यहाँ हम अंत समय में हैं, निश्चय ही। अब ठीक है, और इस सप्ताह के मध्य में अब यहाँ 70 हैं। अब यदि ये ठीक 7 वर्ष हैं प्रत्येक सप्ताह और हमारे पास पहले ही 69 सप्ताह हैं, तब हमारे पास अन्य जाति का युग है और हम जानते हैं कि हम अन्य जाति युग के अंत में हैं। तो यहूदियों के लिए एक सप्ताह और बचा है, क्या ये ठीक बात है? और ये ठीक 7 वर्ष हैं। यदि ये 7 वर्ष थे, जो कि 7 वर्ष हैं, क्योंकि उसने कहा तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि यहूदियों के लिए हमारे पास 7 वर्ष हैं। क्या ये सत्य है? अब यहाँ देखिए, यदि कोई प्रश्न है तो मैं उसे जानना चाहता हूँ, समझे? और अब सप्ताह के मध्य में, यहूदियों के इस सप्ताह के मध्य में, देखिए ये 3.5 वर्ष मसीह विरोधी प्रधान जो आने को है, और स्मरण रखें वो रोम में से आता है। वो प्रधान जो आने को है वो क्या है? एक पोप, लोगों के मध्य में एक प्रधान जो आना है। वे एक फिराउन को खड़ा करेंगे जो यूसुफ को नहीं जानता। अब आप प्रोटेस्टेंट कहते हैं ठीक है, अब यही है, परंतु एक मिनट, हम पाते हैं कि प्रोटेस्टेंटों की एक संस्था है जो कि नामधारी कलीसिया का संघ है, बन रही है, पशु की मूरत और उसके साथ हो लिए हैं, और हम यहाँ ये पाते हैं कि यहूदियों को इस संघ में बुलाया गया है। जी हाँ श्रीमान, और वे सहमत हैं। बाइबल ने कहा वे हुए, और वो उनके साथ वाचा बांधता है। 70वें सप्ताह के बीच में वो तोड़ देता है, मसीह विरोधी अपनी वाचा यहूदियों के साथ तोड़ देता है। तेरे लोग क्यों? और हम प्रकाशित वाक्य 11 में पढ़ते हैं कि मैं भेजूंगा, ये 11 है, अब आप 19 अध्याय की ओर आ रहे हैं, कि वो अपने 2 भविष्यद्वक्ताओं को भेजेगा और वे उस समय में भविष्यवाणी करेंगे, और तब वे उन दोनों भविष्यद्वक्ताओं से क्रोधित हो जाएंगे और वास्तव में उन्हें मार देंगे। क्या ये ठीक बात है? और उनकी लोथें आत्मिक गली में, जो कि सादोम और अमोरा कहलाती हैं, पड़ी रहेंगी, जहां हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था, यरूशलम। ये ठीक बात है? और वे वहां पर 3 दिन रात पड़े रहेंगे, और 3 दिन और रात के पश्चात जीवन का आत्मा उनमें आकर समा जाएगा, और वे जीवित होकर और महिमा में चले जाएंगे। उस नगर का 10वां भाग उस समय गिर जाएगा। क्या ये ठीक बात है? समझे, ये क्या है? अंतिम 70वें वर्ष के मध्य में जब कलीसिया ऊपर चली जाती है, तब संघ वो मूर्ख कुंवारियां, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और गुनगुने पेंटिकॉस्टल, वे सब मिलकर संघ के साथ हो जाएंगे, जो कि वे पहले ही अब अपना राज्य पा चुके हैं, और जब वे करते हैं तो वे वाचा बांधेंगे, और ठीक है, अब ये नया पोप जो अब हमारे पास है, उन सबको इसमें लाना चाहता है। क्या आप नहीं देख सकते कि कैसे सारी बातें इकट्ठी हो रही हैं? इस पर बात करने जा रहा है, और उन सबको अंदर लाने के लिए सैकड़ों और सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष में, 1000 या 2000 वर्षों में ये कभी नहीं हुआ, परंतु अब वो उन सबको एक साथ ला रहा है और संघ बना रहा है, और उसमें वे यहूदी इसे स्वीकार करेंगे। ओ महिमा, हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो युगानुयुग तथा जीवता है, उसकी महिमा हो। आप इसी स्थान पर हैं। अब भाई ये इतना सरल है, इतना सरल कि एक छोटा बालक भी इसे समझ सकता है। यहूदियों और प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों को एक साथ मिलाकर संघ, और स्मरण रखें कि ये 2 भविष्यद्वक्ता जब आएंगे तो क्या करने जा रहे हैं? ये पशु, ये प्रधान जो पवित्र लोगों की सामर्थ को तितर बितर कर देगा, वो क्या करेगा? वो उनके साथ अपनी वाचा को तोड़ देगा। 3.5 वर्ष पश्चात वो उन्हें बेदखल कर देगा। अब लोग सोचते हैं ये साम्यवाद है, ये इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा ने अभी तक आपसे व्यवहार नहीं किया। ये साम्यवाद नहीं, ये धर्म है। बाइबल ने कहा वो इतना समानता में होगा, यदि संभव हो तो ये चुने हुए को धोखा दे दे। यीशु ने ऐसा कहा, देखा हम अंत में हैं। अब ये 2 भविष्यद्वक्ता ये क्या करेंगे? ये मूसा और एलिया हैं, जो कि दृश्य में आएंगे। वे यहूदियों को उनकी गलती बताएंगे, और यहूदियों के उस झुंड में से जो कि अब वहाँ है, 144,000 परमेश्वर इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बुलाएगा। ये क्या है? इस अन्य जाति युग से एलिया का आत्मा हटकर यहूदियों की कलीसिया में कार्य जारी रखेगा, और सीधा वहाँ जाकर बुलाएगा मूसा उसके साथ। हालेलुया, आप ये देखते हैं, और वो पेंटिकॉस्ट के उसी संदेश को उन यहूदियों को प्रचारेगा कि उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया था। आमीन, आप देखते हैं, ये वही पेंटिकॉस्टल संदेश उन यहूदियों को वहाँ प्रचारा जाएगा, और वे इन यहूदियों से इतनी घृणा करेंगे कि वे उन्हें मार डालेंगे, और सारे राष्ट्र उनसे घृणा करेंगे। और इस सप्ताह के मध्य में, क्योंकि उन्होंने एक महान सामर्थी 144,000 खड़े कर दिए, उनके पास पवित्र आत्मा है। और भाई आप आश्चर्य कर्मों के विषय में बातें करते हैं, उन्होंने वे किए, उन्होंने आकाश को रोक दिया और उनके भविष्यवाणी के दिनों में वर्षा नहीं हुई, उन्होंने पृथ्वी को मरी से मारा जब कभी भी उन्होंने चाहा, उन्होंने मरियां और हर प्रकार की चीजें दी, उन्होंने रोमियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर दी, परंतु अंततः वे मारे जाएंगे। हमारा परमेश्वर एक भयानक परमेश्वर है जब वो क्रोधित होता है, परंतु स्मरण रखें ये 70वें सप्ताह में है और कलीसिया महिमा में है। आमीन। विवाह का भोज चल रहा है। जी हाँ, अब ध्यान दें, यही जहाँ हम उसे कलीसिया को वापस हजार वर्षीय मंदिर में वापस आते देखते हैं, यहाँ यहूदियों के युग के अंत में अभिषिक्त किया हुआ, यहाँ वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है और वे जो उसके पीछे पीछे सफेद घोड़ों पर हैं, घोड़ा सामर्थ, सफेद वस्त्र पहने हुए, लहू यानी लहू में डूबा वस्त्र, उसके ऊपर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, वो एक सामर्थी जयवंत के समान आता है। जी हाँ श्रीमान, कि सहस्र शताब्दी को व्यवस्थित करे, मंदिर में आता है, महिमा हो, वहाँ वो 144,000 से मिलता है। अब यहाँ उस 70वें सप्ताह के पश्चात 70वां सप्ताह, ये 70वें सप्ताह की अवधि में हो रहा है, तीन में इसके मध्य में वो इसे तोड़ देता है, क्योंकि वो उन दो पेंतिकॉस्टल भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। श्रीमान, ये पृथ्वी पर विपत्ति लाता है और लड़के परमेश्वर उस कलीसिया को श्राप देता है और परमेश्वर उसे आग से जला देता है। और क्यों वो, हम इसे वहाँ पाते हैं जहाँ तक कि जहाज के संगी वहाँ खड़े हुए कहते हैं, हाय हाय वो रोम महान व्यभिचारी नगरी, वो एक ही घड़ी में अपने अंत पर आ पहुँची, वो नगरी टुकड़े टुकड़े हो गई। परमेश्वर जानता है कि कार्यों को कैसे किया जाए। और एक स्वर्गदूत ने उस ओर देखकर कहा, क्यों मसीह के हर शहीद का लहू उस नगरी में मिला था, उसके धोखा देने के कारण यहाँ आकर संस्थागत कर और बहुत सारी चीजें करके और कलीसिया को दूषित किया और उसमें बहुत सी बातें ले आए और प्रत्येक व्यक्ति जिसने इसे रोकने का यत्न किया और उसे बाहर निकालने का यत्न किया। महिमा हो। ओ मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यात्रा पे हूँ। देखिए, क्या पुत्र के प्रकाश के लिए आनंदित नहीं, पुत्र के उजियाले में चल रहे हैं। भाई हम कहाँ हैं? अंतिम घड़ी में, ये किसी भी समय हो सकता है, हम यहीं पर हैं। संदेश अंतिम कलीसिया के पास चला गया है, कलीसिया जिसने अपने मसीह को अस्वीकार कर दिया था। यहूदी अपने देश में हैं एक समय अवधि के लिए, 40 वर्षों के लिए। नया नगर बन चुका है, वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मसीह के आगमन की। ये कब होगा मैं नहीं जानता, जब वो पत्थर इस मूरत को नष्ट करेगा, वो जा चुकी है, तब ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, सप्ताह के मध्य में 3.5 दिन बल्कि 3.5 वर्ष वो वाचा को तोड़ देता है और बलिदान और अर्पण को रोकता है, जिसे उन्हें पहले ही तय कर लेना है, क्योंकि वो पीछे जाकर और कहते हैं, अब देखो तुम सब कलीसियाओं, आप पशु के लिए इस मूरत को ग्रहण कर सकते हैं, हमारी संगति करो, हम साम्यवाद से बच जाएंगे, हम साम्यवाद को एकदम साफ कर देंगे। समझे, वे ये कर सकते हैं, समझे, और वे इसे करेंगे। परंतु अब ध्यान दें और इस प्रतिदिन की आराधना को व्यवस्थित करें और नगर में बलिदान वापस आएगा जब मंदिर फिर से बनेगा, और ये प्रधान जिसे सप्ताह के मध्य में आना है अपनी वाचा को तोड़ेगा और बलिदान को बंद करेगा। ये कहा गया, वो इसे तितर बितर कर देगा और वो क्या करेगा, और ये अंत तक बना रहेगा। और ध्यान दें, उजाड़ के लिए घृणा को फैलाएगा। घृणा को फैलाना, घृणित बात क्या है? मलिनपन, समझे, उजड़ जाने देने के लिए, ये क्या है? समाप्त हो जाना, इसको फैलाना, इसके साथ समाप्त हो जाना, समझे, रोमी सामर्थ को फैलाना, सारी मूर्ख कुंवारियों को जीतने के लिए, यहूदी और सारे, हम सारे के सारे रोमी होंगे या हम कुछ नहीं होंगे। वो सप्ताह के मध्य में वाचा तोड़ेगा, घृणित बात को सब में फैलाना। यदि ये यीशु के समय में घृणित बात थी जब रोम वहाँ अपने प्रचार के साथ आ गया था, ये फिर से रोम होगा, ये कलीसिया के लिए फिर से घृणित बात होगी कि उजाड़ दे और अंत तक समाप्त होने तक चलता रहे। वो क्या करेगा? वो अंत तक इसे जारी रखेगा, ये अंत है। अब यहूदी और रोमनवाद, प्रोटेस्टेंटवाद, जो कि मूर्ख कुंवारियां हैं, ये अपने आप को कलीसियाओं के संघ में इकट्ठा कर लेंगे, और ये जैसा यीशु ने मत्ती 24 में कहा और प्रकाशित वाक्य 13:14 से, आइए हम प्रकाशित वाक्य 13:14 को लें, देखें क्या है। मैंने इस पर यहाँ निशान लगा रखा है कि देखूं क्या है। 13:14, ही क्या श्रीमान, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार होगा, यहाँ कलीसियाओं को संघ में गठित कर रहा है, और पशु की दृष्टि में वे जो पृथ्वी पर रहते हैं कहता है कि वे पशु की एक मूर्त बनाए, और जिस पशु को तलवार लगी थी वो जी गया है। अब हम जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये पशु कौन था। वो सामर्थ जिसको प्राण घातक घाव लगा था वो जी गया है। ये जब पागन रोम मार दिया गया था और पोप के रोम ने इसका स्थान ले लिया था, जब पागन रोम मर गया था और पोप की सामर्थ ने इसका स्थान ले लिया। अब प्रकाशित वाक्य 13:14, यीशु ने मत्ती 24 में उन्हें इसकी चेतावनी दी, पशु की एक मूर्त। पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:3-4 आइए निकालें। देखिए पौलुस वो यहाँ किस विषय में कहता है, ये महान पवित्र आत्मा प्रभु के इस भविष्यद्वक्ता पर। देखिए वो इस अंतिम दिन के विषय में क्या कहता है, 2 थिस्सलुनीकियों 2:3, ये क्या है। ठीक है श्रीमान, और तीसरे पद से आरंभ करें, मैं विश्वास करता हूँ कि ये है। ठीक है, हम इसे पढ़ें, हर कोई ध्यान पूर्वक सुने। कितने विश्वास करते हैं कि पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था? आमीन। यहाँ ध्यान दें, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। वो उनके मस्तिष्क से निकालने का प्रयास कर रहा है कि तब वो आ रहा है। कहा कलीसिया में से धर्म का त्याग होना है, पहले इस लोदेशियन युग में आता है। और पाप का वो पुरुष प्रकट हुआ, पाप का पुरुष पवित्र आत्मा में अविश्वास प्रकट हो गया, विनाश का पुत्र, जैसे यहूदा था, कलीसिया का खजांची, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर। भाई, वेटिकन नगर के अलावा इस पृथ्वी पर कोई और व्यक्ति है जो ये करता है? ये कहाँ पर है? अब यहाँ प्रकाशित वाक्य 13 में आए और आपको ये दिखाता है कि ये व्यक्ति एक नगर में बैठता है, एक नगर में, और नगर 7 पहाड़ों पर है, और उस पशु का अंक 666 लिखा है, लातिनी में रोमन अक्षर विन्यास 666 है, विकारियस फिलिदी, जो कि परमेश्वर के पुत्र के बदले में पोप के सिंहासन पर, और उसकी कुर्सी पर 3 मुकुट हैं, और मैंने सीधे सीधे मुकुट को देखा और इतने ही पास खड़ा हुआ जितना मेरा मुख मेरे हाथ से, इस प्रकार, और अलंकृत मुकुट पोप का वहीं वेटिकन में मैंने स्वयं देखा, वहाँ खड़े होकर उसे देखा। निश्चित हूँ, मैं जानता हूँ मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। वो स्वयं को जो परमेश्वर कहलाता है उससे बड़ा ठहराता है, सारे संतों से, वो उन सब में पवित्र है, परमेश्वर के मंदिर में बैठता है और स्वयं को दिखाता है कि वो परमेश्वर है, पृथ्वी पर पापों को क्षमा कर रहा है, और आदि आदि, आप जानते हैं। निसंदेह पौलुस ने कहा पहले धर्म का त्याग होना है कि वो विनाश का पुत्र प्रकट हो। क्या तुम्हें स्मरण नहीं जब मैं तुम्हारे साथ था, मैं ये बातें तुमसे कहा करता था? ओ, मैं भी वहाँ बैठकर सुना करता, पौलुस को प्रचार करते हुए सुनता, क्या आप नहीं? मैं उसे सुनना कितना पसंद करता। ओ, अब वो क्या करने जा रहा है? एक मूर्त पशु की, 2 थिस्सलुनीकियों। अब सुने, अब जरा ध्यान से सुने, कलीसिया पोप के वापस आने को अनुभव कर रही है। ये क्या है? कलीसिया युग का अंत। पौलुस, उन्होंने निकोलाइयों की इन बातों को उभरते देखा, वे एक पवित्र मनुष्य बनने जा रहे हैं। किसको? पोप। संसारिकता और कुलीन लोग कलीसिया में घुस आए हैं और आराधना की विधि को बदल रहे हैं। पौलुस ने पवित्र आत्मा से उसे आत्मा में पकड़ लिया, और कलीसिया अपने वर्गों और अभिजात वर्ग, कुलीन व्यक्तियों और आदि आदि, कि उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ आ रहा है और पवित्र आत्मा उन्हें अंतिम दिनों की चेतावनी दे रहा है। क्या आपको स्मरण है कैसे यीशु ने इसके लिए कहा? निकोलाइयों के कार्य शिक्षा बन गई और तब संस्था हो गई। भाई, अब हम अंधकार में नहीं है, स्मरण रहे, हम यहाँ हैं। निकोलाइयों के कार्य संस्था इन महान विशिष्ट व्यक्तियों में आरंभ हुए और कलीसियाओं में और आदि आदि, तब ये कैथोलिक कलीसिया बन गई। और पौलुस ने कहा अंत समय नहीं आ सकता जब तक वास्तविक पेंतिकोस्तल विश्वास का त्याग ना हो ले। अंत नहीं आ सकता, पेंतिकोस्तल विश्वास समाप्त हो जाएगा, विशिष्ट व्यक्ति अंदर बैठे होंगे, उनके पास एक व्यक्ति होगा जो परमेश्वर का स्थान लेगा, परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा और इस प्रकार के लोगों के ऊपर स्वयं को दर्शाएगा। और ये देखिए, ये क्या है? निकाओ, परमेश्वर पर जय पाना, समझे? सब जो परमेश्वर कहलाता है वो परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा, परमेश्वर के समान। पौलुस ने कहा अंत के दिनों में पहले धर्म त्याग होगा, और हम यहाँ इस धर्म त्याग को होते हुए देख रहे हैं और कलीसिया को दूर दूर इससे और दूर होते देख रहे हैं और पीछे जा रही है और हम अंत समय में हैं। ठीक है, अब यदि 69 सप्ताह ठीक बैठते हैं, यहूदी अब अपने देश में हैं, अन्य जाति कलीसियाई युग ठीक अंत समय पर है, निकोलाइयों के समय पर यानी लुदिशियन समय में, प्रभु का आगमन कितना समीप है, सब बातों का अंत, इस युग का अंत उठा लिया जाना। जिस क्षण वो 70वां सप्ताह आरंभ करता है या 7 वर्ष, कलीसिया जा चुकी है। मित्रों, क्या आप ये देख सकते हैं? यदि आप देख सकते हैं तो अपने हाथों को उठाएं। समझे, हम बालक ना रहें, इधर उधर अधिक खेल कूद में नहीं, हम अंत समय में हैं, कुछ घटित होने को है, हम अंत में हैं, हम यहाँ हैं। ये 69 सप्ताह ठीक बैठते हैं, यहूदियों का जाना सही बैठता है, कलीसिया काल ठीक बैठता है, हम अंत समय में हैं, अंत समय, लुदिशियन कलीसियाई काल इसका अंत है। वे सितारे संदेशवाहक अपना संदेश प्रचार कर चुके, ये समाप्त हो गया, हम किनारे पर हैं। 40 वर्षों से यहूदी वापस आ रहे हैं, वे अपने देश में हैं। अब अगला क्या होना है? पत्थर का आना। हम वहीं पर हैं। ये किस समय घटित होगा मैं नहीं जानता, परंतु भाई मैं अपने में तैयार रहना चाहता हूँ, मैं अपने वस्त्र तैयार रखना चाहता हूँ। अब हमारे पास कुछ मिनट शेष हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे शांति से सुने। अब जरा मिनट, जिस क्षण वो 70वां सप्ताह आरंभ करता है या 7 वर्ष, कलीसिया चली गई। अब सुनिए, मैं फिर से उल्लेख कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप ना भूलें। जब मैं लिख रहा था तो पवित्र आत्मा ने ये मेरी लेखनी पर दिया। हम लुदिशियन काल में हैं। मसीह अपनी ही कलीसिया के द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। इस युग का सितारा संदेश आगे बढ़ चुका है और इसराइल अपने देश में है। आप देखते हैं कि हम कहाँ हैं? हम अंत में हैं। अब केवल एक या दो टिप्पणियां और। ये सब जो हम देखते हैं हमारी सहायता करेगा उसके अनुग्रह के द्वारा, जैसे कि हम अंतिम 7 मोहरों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें, हम इसे कहां पर नहीं पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6:1 से प्रकाशित वाक्य 19:21, हम इसे नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए, हम इसे वहां पीछे लागू करने का यत्न कर रहे थे इस अन्य जाति युग में, जबकि देखिए, ये इस युग में पूरा हो गया। अब हमने इसे परमेश्वर के वचन के द्वारा सिद्ध कर दिया है और इतिहास और हर चीज के द्वारा और समय के चिन्हों के द्वारा, दिनों के द्वारा, और कुछ भी नहीं छूटा। हम अन्य जातियों के अंत में हैं। हम इस विषय में क्या करने जा रहे हैं? ये मेरा और आपका प्राण है, ये मेरा और आपका जीवन, ये हमारे प्रियजनों का जीवन है। हमारी पीठ काफी थपथपाई जा चुकी है, हमारे पास बहुत सी सरल बातें हैं। अच्छा हो कि हम कुछ करें, ये आपके सोचने से पहले है, केवल स्मरण रखें। अब यदि ये आप लिखना चाहें तो ये चोट मारने वाला वक्तव्य है। कृपया ध्यान से सुने, इसके बाद मेरी अंतिम टिप्पणी होगी। इसके पश्चात मेरे पास छोटी सी बात है, एक छोटा अभिलेख जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। एक क्षण विश्राम करें और ध्यान पूर्वक सुने, इस पर कुछ चौंका देने वाला तथ्य दे रहा हूँ, समझे। इस युग के अंत में और मसीह के आगमन में एक ब्लेड की धार घुसाने की भी जगह नहीं है। सब कुछ है, कुछ नहीं बचा। क्या इसराइल अपने राष्ट्र में है, हम ये जानते हैं? क्या हम लुदिशिया काल में हैं? क्या इस पेंतिकोस्तल युग का संदेश लोगों को वास्तविक पेंतिकोस्तल आशीष पर वापस लाने के लिए झकझोर रहा है? क्या प्रत्येक संदेशवाहक युग में से होते हुए आया और ठीक वही बातें? क्या राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध नहीं? अकाल? क्या आज देश में अकाल नहीं? सच्ची कलीसिया सैकड़ों मील कार चलाकर परमेश्वर का वचन सुनती है, केवल रोटी के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अकाल आ रहा है। क्या ये ठीक है? क्यों हम ठीक इसके मध्य में रह रहे हैं, ठीक यहाँ पर? देखिए, हम कहाँ हैं? हम उस पत्थर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौंका देने वाला बयान। जब से परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा बांधी, तब से इसमें चूके नहीं। जब से परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, उत्पत्ति 12:3 और मसीह को यहूदियों के द्वारा अस्वीकार किए जाने तक 33 ईसा पश्चात और गलतियों 3:16-17 और USHERS अशर्स की वंशावली हिब्रू के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ्य यहूदियों के संग ठीक 1954 वर्ष रही। परमेश्वर ने यहूदियों से 1954 वर्ष तक व्यवहार किया यहूदियों की वंशावली के अनुसार और गलतियों 3:16-17। मेरे पास बहुत से पवित्र लेख हैं, परंतु केवल यही दिया है। तब मसीह के अस्वीकार करने के पश्चात वो अन्य जातियों की ओर मुड़ गया कि लोगों को अपने नाम के लिए ले ले। क्या आप इस पर वचन चाहते हैं? वो स्थान प्रेरितों के काम 15:14। अब समय को जोड़ते हुए हम पाते हैं, ध्यान से सुनिए, हमारे पास 17 वर्ष बचे हैं और भी वही समय अवधि होगी जैसा कि परमेश्वर हमारे साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में व्यवहार कर रहा है 33 ईसा पश्चात से 1977 तक। ठीक वही समय अवधि 1954 वर्षों की परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार किया है, वैसे ही जैसे उसने यहूदियों के संग किया। इस विषय में क्या है? अब अपनी पुस्तक में निशान लगा लें। मैं यहाँ आपको एक छोटा सा वचन का लेख देना चाहता हूँ। लेव्यवस्था 25 आठवें पद से आरंभ करके परमेश्वर ने हर 49 वर्षों बाद जुबली वर्ष दिया। हम जानते हैं 50वां वर्ष जुबली का हुआ करता था, ये हम समझते हैं। लेव्यवस्था 25:8 की पहली जुबली वर्ष से 1977 में 70वीं जुबली होगी। ठीक 3430 वर्ष बनते हैं। जुबली का अर्थ चले जाना, छुटकारा। ओ, हम उस प्रसन्नता वाले सहस शताब्दी के दिन की राह देख रहे हैं जब हमारा धन्य प्रभु आएगा और अपनी प्रतीक्षा करती हुई दुल्हन को उठा ले जाएगा। और संसार कर्रा रहा है, उस सुंदर छुटकारे के दिन के लिए चिल्ला रहा है जब हमारा बचाने वाला इस पृथ्वी पर फिर आएगा। क्या आप इसे समझ गए? परमेश्वर ने हमारे साथ उतने ही समय तक व्यवहार किया जितना यहूदियों के संग, जब से उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और 33 ईसा पश्चात मसीह के अस्वीकार किए जाने तक 1954 वर्ष होते हैं। अब हमारे पास 17 वर्ष बचे हैं। हमारे पास 1930 कुछ वर्ष हैं। हमारे पास 77 तक 17 वर्ष बाकी हैं। 70वीं जुबली होगी जब से जुबली आरंभ हुई है। और ये क्या होगा? ओ भाई, अब ध्यान पूर्वक देखें, चूके नहीं, ये अन्य जाति दुल्हन के ऊपर जाने की जुबली होगी और मसीह का यहूदियों के पास वापस जाना जब वे बंधुआ से बाहर आए। आमीन। क्या आप देखते हैं? वे समस्त संसार में से वहाँ उस दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं। ओ मेरे प्रभु, देखिए हम कहाँ हैं? हम नहीं जानते कि ये किस समय घटित हो जाएगा। अब हम अंत समय में हैं। अब सुनिए, जो यहाँ आराधनालय में पुराने लोग हैं, वे यहाँ बहुत पुराने समय से हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी बात पर ध्यान दें। कल तक मैं इसे नहीं जान पाया। मैंने इसे पॉल बॉयड इतिहासकार से लिया और तब मैंने इसे पवित्र शास्त्र में से होते हुए पीछे की ओर खोजा। यहाँ पर दूसरी दिनांक निकली और आदि आदि, और इसे पाया और चलाया, उसमें होते हुए खोजा। अब 1933 में जब हम यहाँ मैसोनिक आराधनालय में आराधना कर रहे थे, जहाँ आज चर्च ऑफ क्राइस्ट खड़ा है, एक दिन अप्रैल की प्रातः घर छोड़ने से पहले मैं अपनी कार को समर्पित कर रहा था। मुझे 33 मॉडल की कार मिली थी और मैं उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर रहा था। और एक दर्शन में मैंने अंत समय को देखा। अब ध्यान दें, ये कितना चौंका देने वाला है। पहले जब मैं एक लड़का था, आप कल्पना कर सकते हैं कि 1933 का मॉडल कैसा दिखता होगा, अब वो कैसा दिखता था। और मैं वहाँ मैसोनिक आराधनालय में गया, जहाँ आप में से कुछ पुराने लोग यहाँ सदस्य हैं। घर पर एक पुराने कागज पर लिखा हुआ है, ये अब छप चुका है और सारे संसार में जा चुका है। वो 1933 था और मैंने भविष्यवाणी की थी संयुक्त राज्य में कोई दुखद घटना होगी 1977 से पहले या उस वर्ष में। कितनों को स्मरण है मैंने ये कहा था? निश्चय ही पास में देखें, निश्चय ही। अब ध्यान दें, मैंने इस महान नाश होने से पहले सात बातों की भविष्यवाणी की या इस संयुक्त राज्य में कोई भयानक महान घटना घटेगी। मैंने कहा, अब स्मरण रखें, यह आरंभ होने से पहले मैंने कहा था हम दूसरे विश्व युद्ध में जाएंगे। कितनों को स्मरण है मैंने ये बात कही थी? आमीन कहें। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध। मैंने कहा, अब जो राष्ट्रपति है, मैंने ये पुराने पवित्र लेख से नकल की है, तब भी ये कल पुरानी बात है। राष्ट्रपति जो अब है, जो था, कितनों को स्मरण है कि वो कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मैंने कहा था जो अब हमारा राष्ट्रपति है वो चौथे सत्र में भी रहेगा, उस समय वो अपने पहले में था, चौथे सत्र में भी जाएगा और हम दूसरे विश्व युद्ध में जाएंगे। मैंने कहा था तानाशाह जो अब इटली में उठ रहा है, जो कि मसलोनी है, वो राज्य में आएगा और वो इथोपिया जाएगा और इथोपिया उसके कदमों में गिर जाएगा। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि लोगों का एक झुंड आया और खड़ा हुआ। जब मैं अपनी सभाएं रेडमैन के भवन में वहाँ कर रहा था, उस रात्रि जब मुझे वहाँ रेडमैन भवन में जाकर प्रचार करना था और ऐसी बात कहने के कारण वे मुझे उस भवन से बाहर उठाकर फेंकने को थे। जी हाँ श्रीमती विल्सन, मैं जानता हूँ कि आप, ये ठीक बात है जब मैंने कहा, परंतु क्या उसने ये किया? मैंने कहा वो लज्जाजनक मृत्यु से मरेगा और वो मरा। वो और वो स्त्री जिसके साथ वो भागा, वो रस्सी से सड़क पर उल्टे लटके थे, उनके पैर ऊपर, उनके कपड़े नीचे लटक रहे थे। ठीक है, यही घटित हुआ। और तब मैंने कहा महिलाओं को वोट देने की अनुमति मिल गई है, जो कि इस राष्ट्र के लिए बिल्कुल अशोभनीय है, और मत डालने में एक दिन वे एक गलत मनुष्य को चुन लेंगे। और उन्होंने ये इस अंतिम चुनाव में कर लिया। ओ प्रभु। चार, मैंने कहा विज्ञान इस प्रकार से उन्नति करेगा, नहीं ये तीसरा है, मुझे क्षमा करें, यहाँ अगला वाला है। चौथा, मैंने कहा था हमारा युद्ध जर्मनी से होगा और वे एक बड़ा सा सीमेंट का सा स्थान बना लेंगे और उसमें स्वयं को सुरक्षित कर लेंगे और अमेरिकनों की भयानक हार होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये जानता है जिसके समक्ष मैं अब खड़ा हूँ। मैंने देखा कि वे स्वाधीन नाजी अमेरिकनों पर इस प्रकार से लात मारते हैं और आदि आदि उस दीवार पर, और यहाँ पर बहुत से लड़के खड़े हैं जो वहाँ सिगफ्रॉइड रेखा पर थे, वे जानते हैं कि ये क्या था। और स्मरण रहे ये सिगफ्रॉइड रेखा के बनने के 11 वर्ष पहले की बात थी। क्या परमेश्वर सच्चा है? क्या वो अभी होने वाली बातों को बताता है? ध्यान दें, ये वाला चौथा था। अब पांचवी बात, विज्ञान इतनी प्रगति कर लेगा जब तक कि वो एक कार ना बनाएगा जो कि बिना स्टीयरिंग चक्कर के चलेगी, और कार निरंतर अंडाकार होती चली जाएगी समय के अंत तक। मैंने एक अमेरिकन परिवार को एक चौड़े मार्ग पर कार में बैठे हुए देखा, वो जहां स्टीयरिंग होना चाहिए उधर पीठ कर बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि वे चेकर या ताश खेल रहे हैं, और हमारे पास है, ये टेलीविजन पर थी, पॉपुलर साइंस मैकेनिक्स, बल्कि सब लें, हमारे पास कार है, ये रिमोट से चलती है रडार के द्वारा, उसमें यहाँ तक कि कोई स्टीयरिंग नहीं है, केवल इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जैसे आप अपना टेलीफोन घुमाकर करते हैं और आपकी कार आपको वहाँ ले जाएगी, ये टकरा नहीं सकती, नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, किसी दूसरी कार से, चुंबक आपको अलग रखेगा, समझे? उनके पास ये है। ओ, इस पर विचार करें, इसके घटने के 30 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी हुई। अब ये हमें तब राष्ट्रपति कैनेडी के चुनाव तक ले आया, और ये काल दृश्य पर आ रही है, पांच बातों को सात में से जो घटित हो चुकी हैं। अब मैंने भविष्यवाणी की और कहा, मैंने देखा कि एक महान स्त्री खड़ी होती है, सुंदर दिखती है और वास्तविक उच्च राजसी के समान बैंगनी वस्त्र पहने हैं। मैंने यहाँ ये उपवाक्य में लिख रखा है, वो एक महान शासक संयुक्त राज्य में है, संभवतः कैथोलिक कलीसिया, एक स्त्री, कोई स्त्री, मैं नहीं जानता कि ये कैथोलिक कलीसिया होगी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, मैंने केवल एक महिला को देखा बस, परंतु ये स्त्रियों का देश है, ये राष्ट्र भविष्यवाणी में 13 है, इसके 13 धारियां हैं, 13 सितारे, इसने 13 कॉलोनियां आरंभ की, हर चीज 13, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में प्रकट होती है। ये 13 है और ये स्त्रियों का देश है। तलाक की अदालतें अमेरिका में हमारी स्त्रियों के द्वारा जितने तलाक होते हैं उतने समस्त राष्ट्रों में नहीं होते। हमारे राष्ट्र का नैतिक स्तर नीचा है और फ्रांस और इटली जहां व्यभिचार सड़कों पर होता है वहां से अधिक यहां तलाक है, परंतु वे वेश्याएं हैं। हमारी विवाहित स्त्रियां बहुत सारे पुरुषों के साथ रहने का यत्न करती हैं और बहुत से विवाहित पुरुष दूसरी स्त्रियों के साथ रहने का यत्न करते हैं। उन राष्ट्रों में जहां उनका बहुविवाह पद्धति है यह हजार गुना अच्छा है, और तब भी बहुविवाह गलत है, हम जानते हैं, परंतु ये दिखाई पड़ता है कि हम कितने गिरे हुए हैं। मेरे पास अखबार में से एक कागज है, वो ये दर्शाता है कि जब हमारे लड़के अंतिम युद्ध में विदेश गए थे, जब वो समाप्त हुआ, मैं विश्वास करता हूँ कि लगभग 70%, क्यों, एक मिनट रुकें, मैं विश्वास करता हूँ 4 में से 3 जो विदेश गए थे इससे पहले कि वो वापस आते उन्हें तलाक मिल चुका था, और ये बड़ी बड़ी पहली पंक्तियों में लिखा था, हम अमेरिकन लोगों के आचरण को क्या हुआ, आपको स्मरण है, इसे देखा था, आप सबने देखा, मेरा अनुमान है। हमारी अमेरिकन स्त्रियों के आचरण को क्या हुआ, कारखाने दूसरे पुरुषों के साथ काम कर रही हैं, ये स्त्रियों का राष्ट्र है। वो क्या प्राप्त करने जा रही हैं, एक स्त्री ईश्वर या एक देवी। अब तब इसके पश्चात मैंने घूम कर देखा और मैंने देखा कि ये संयुक्त राज्य एक सुलगती आग के समान जल रहा है, चट्टाने उड़ गई और इस प्रकार जल रहा था जैसे लट्ठों का ढेर आग में जल रहा हो या कुछ जो कि अभी अभी आग लगी हो, और जहाँ तक मैं देख सकता था वो जल गया था और तब दर्शन समाप्त हो गया। 5 में से 3 हो चुके हैं, बल्कि 5, 7 में से हो चुके हैं, और यहाँ ये आता है और दर्शाता है, और तब मैं भविष्यवाणी करी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रभु ने ये मुझे बताया है, परंतु उस प्रातः आराधनालय में खड़े हुए मैंने कहा जिस प्रकार से उन्नति हो रही है, मैं उनकी दीवार के पिछले छोर तक गया और दीवार के दूसरे सिरे तक दौड़ा, मैंने कहा जिस प्रकार से उन्नति हो रही है मैं भविष्यवाणी करूंगा कि समय, मैं नहीं जानता मैं ये क्यों कह रहा हूँ, परंतु मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सब अब 1933 से और 77 के मध्य में घटित होगा, और ये न जानते हुए परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, मैं इसे कल तक नहीं जानता था कि 1977 में जुबली है और बिल्कुल उतना ही समय बीत गया जो उसने इसराइल को दिया था, और हर चीज अंत पर है, इसलिए हम और यहाँ हम युग के अंत में हैं, 70वें सप्ताह के आने पर, हम नहीं जानते किस समय कलीसिया चली जाएगी। ओ प्रभु, मित्रों हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ पर हैं, क्या आप देखते हैं कि अब हम कहाँ हैं, क्या आप अब डेनियल के 70वें सप्ताह को समझते हैं। देखिए अब जब हम इन मोहरों और आदि आदि में जाते हैं इन मोहरों को तोड़ते हुए, तो पहला वाला सफेद घोड़े का सवार आता है और उसके हाथ में एक धनुष है, देखिए कि वो कौन है। उसके बाद पीले घोड़े के सवार को देखें, समझे, देखिए ये कौन है, और देखिए वे कैसे अंदर आते हैं, देखिए 144,000 आते हैं, उन मूर्ख कुंवारियों को देखिए जब वे आती हैं, उन सब बातों को घटित होते देखिए, कटोरों और विपत्तियों का उल्टा जाना, मेंढक के समान 3 अशुद्ध आत्माएं, उन चीजों को देखें कि वे कैसे इन मरियों में ठीक बैठती हैं जब वे उंडेली जाती हैं। हर बार एक मोहर खुली, एक मरी उंडेली गई, एक बर्बादी आती है। अब देखिए कि क्या घटित होता है अंत में, और ओ इन 3 भविष्यद्वक्ताओं को देखिए, इन 2 भविष्यद्वक्ताओं को जब वे यहाँ उठते हैं और सप्ताह के मध्य में वे इस प्रकार काटे जाते हैं, और तब आर्मगेदोन का युद्ध आरंभ होता है, तब परमेश्वर स्वयं बोलना आरंभ करता है, तब वो खड़ा होता है और लड़ना आरंभ करता है। वे भविष्यद्वक्ता पृथ्वी को मारते हैं, वे यीशु मसीह के नाम को प्रचार कर रहे हैं, वे उसी प्रकार से बपतिस्मा दे रहे हैं, वे वही कार्य कर रहे हैं जो पहले पेंतेकोस्तल पूर्वजों ने किए, और बहुत से उनके पीछे उनका अनुकरण कर रहे हैं, परंतु वे जिन्होंने संघ संस्था बनाई सीधे आगे बढ़ गए, और यहाँ तक कि उन भविष्यद्वक्ताओं की सामर्थ्य इसे नहीं तोड़ पाई, और अंत में उन्होंने कहा हम इस सब को एक संस्था बनाएंगे, और ये अंदर लाता है, ये क्या है, घृणित चीज, रोमनवाद, सब जगह फैलाया गया, सारी बातें जो विनाश को लाती हैं, वो घृणित वस्तु जो विनाश करती है हर दूषित वस्तु को अंदर लेती है। स्मरण रखें, वो पुरानी वेश्या माँ जो पशु पर बैठकर इस प्प्रकार के बैंगनी वस्त्र पहने हैं, उसके 7 सिर 10 सिंह है, आपको स्मरण है ये, और उसके हाथ में उसके विनाश का घृणित प्याला था, वो उसकी शिक्षा थी जो उसने लोगों को दी। मेरे भाइयों, हम वही हैं, हम अंत समय में हैं। छोटे बालकों, हम कभी नहीं जानते, हो सकता है जीवित रहने के लिए आज रात्रि हम वापस ना आ सकें, हो सकता है एक दूसरे को देखने के लिए हम फिर जीवित ना रह सकें, मैं नहीं जानता, परंतु अंत इतना समीप है, अंत बहुत समीप है। यह वचन है, ये बिल्कुल ठीक वचन का प्रमाण है। अब यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं समझते, मुझे लिख कर भेजें और मुझे इस विषय में बताएं, समझे। मान लीजिए कोई चीज, आपके कुछ भाई लोग टेप पर, दूसरे भागों में, यदि कुछ ऐसा है कि मैं आपकी सहायता कर सकूं, मुझे बताएं। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं और मैं आपकी संस्था से हो सकता है कि सहमत ना हूं, ना कि आपसे, परंतु आपकी संस्था के तंत्र से। मैं कैथोलिक लोगों से असहमत नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं करता, मैं संस्था के लोगों को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं सब लोगों से प्रेम करता हूं, परंतु मैं उस तंत्र से असहमत हूं जिसमें आप बंधे हुए हैं। इसका यही तंत्र है, यही है। मैं जर्मनी के विरुद्ध नहीं था, ये नाज़िज़्म है। मैं इटली वालों के विरुद्ध नहीं था, ये फासिज्म का विरोध था। और स्मरण रखें, मैंने उस समय दूसरी भविष्यवाणी की थी, केवल एक भविष्यवाणी, और बहुत से पुराने लोगों को स्मरण है। मैंने कहा था तीन वाद हैं जो संसार को आज अपने कब्जे में लेने का यत्न कर रहे हैं, फासिज्म, नाज़िज़्म और साम्यवाद। और मैं क्या कहूँगा, वे सब साम्यवाद में समा जाएंगे। तब मैंने आपको फिर दोहराया था, रूस पर अपनी आंखें रखें, ये याद है, अपनी आंख रूस पर रखें, वो साम्यवाद में सिमट जाएगा। और तब ये सब सिमट कर कैथोलिकवाद में हो जाएगा। स्मरण रखें, अंत समय में ये सब कैथोलिकवाद में सिमट जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। तब आर्मेगेदोन की लड़ाई यहाँ पर है, जब मसीह स्वयं आता है। परंतु ये तीन वर्ष तक था, यानी कि ये 3.5 वर्ष, जो कि प्रकाशित वाक्य 11:3, आपने इसे बहुत बार पढ़ा है। मैंने अपने दो गवाहों को सामर्थ्य दी है और वे 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। ये कितना है, 1260 दिन, 3.5 वर्ष, और तब वे 17वें सप्ताह के मध्य में चौक में मारे जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि डेनियल के 70 सप्ताह कहाँ है, आप देखिए कि हम कहाँ जीवित रह रहे हैं। हम अंत समय में है मेरे मित्रों, हम अंत समय में है। वे दिन, राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है, वे चिन्ह जो भविष्यद्वक्ता ने पहले से बताए, हम यहाँ हैं। अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, यहाँ हैंगा भारी हो गया है, ओ बिखरे हुए, वापस आ जाओ अपनों में। आइए हम इसे गाएं।
Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, ये अद्भुत है ना?
Nations are breaking, Israel awaiting the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O disperse to your own.
अब एक साथ,
a day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
मैं आपके लिए एक छोटा पद
गाऊंगा।
वे उसे कोई तीसरा व्यक्ति बना रहे हैं, आप ये जानते हैं, परंतु वो है नहीं, वो हमारा परमेश्वर है।
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
क्या आप आनंदित नहीं हैं?
Aren't you glad?
भाई वापस संदेश पर आओ, वापस मूल पर आओ, वापस पेंतिकोस्त पर आओ, वापस वास्तविक आशीषों पर आओ, यीशु मसीह के नाम पर वापस आओ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर वापस आओ, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों पर वापस आओ, वापस पेंतिकोस्त पर आओ, संस्था से परे रहो, पवित्र आत्मा पर वापस आओ, वो हमारा शिक्षक है।
Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Is that wonderful?
क्या ये अद्भुत नहीं है? भविष्यद्वक्ता क्या कहता है? एक समय आया जब ये होगा, दिन या रात नहीं कह सकेंगे। देखो ये कैसा है, समझे? कलीसियाई युगों में से होता हुआ बहुत खराब।
Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Hallelujah.
These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Hallelujah.
It shall be light all the other in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today. Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
तीन नहीं परंतु एक। संदेश पर वापस आओ, आरंभ पर वापस आओ। पौलुस ने जो सिखाया उस पर वापस आओ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर वापस आ जाओ। उसने देखा लोगों ने दूसरी तरह से बपतिस्मा लिया, उसने उन्हें बताया कि आकर फिर से बपतिस्मा लो। उसने कहा यदि कोई दूत भी स्वर्ग से आकर कुछ और प्रचार करे वो श्रापित हो। इसलिए संदेश पर फिर से वापस आ जाओ। मित्र ये सांझ का समय है। ओ मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? आप कितने डेनियल के 17वें सप्ताह को देखते हैं और देखते हैं कि 17वां सप्ताह क्या है? जितने इसका विश्वास करते हैं आमीन कहें, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अब अगली चीज क्या है? अब 7 मोहरें। हम ठीक उन पर आते हैं जब प्रभु अनुमति देगा। वो कब होगा मैं नहीं जानता। जब कभी वो इसे बताएगा तब हम इसमें जाएंगे। तब हम लंबी लंबी सभाएं करेंगे क्योंकि ये 6वें अध्याय से 19वें तक है कि उसे देखें। और जैसा कि दर्शाया, जैसा कि मैं इसके साथ हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि कोई इसे गलत समझे। टेप अब भी चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत समझे। अब गलत ना समझें और कहें कि भाई ब्रनम ने कहा कि यीशु 1977 में आएगा। मैंने ऐसी बात कभी नहीं कही। यीशु आज आ सकता है, परंतु मैंने ये भविष्यवाणी की है कि 33 और 77 के मध्य में कुछ घटित होगा। ये बातें जो मैंने दर्शन में देखी घटित होंगी और उनमें से 5 पहले ही हो चुकी हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे कि ये परमाणु वस्तुएं हमारे पास हैं, अब हैं। और क्या आपने देखा कि हमारे राष्ट्रपति ने अभी क्या कहा? दूसरा युद्ध चाहते हैं। वो एक उदाहरण बनना चाहते हैं। वो बर्लिन में से एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। क्यूबा के विषय में हमारे पिछले दरवाजे पर क्या है, उनमें से क्यों नहीं एक उदाहरण बनाएं? उस विषय में क्या है? ओ ये ऐसे ही निरर्थक है, समझे? ओ भाई हम अंत समय में हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि परमेश्वर ने कहा था। तो फिर कुछ भी करने का क्या लाभ है, परंतु पढ़ना कि उसने क्या कहा और ठीक हो जाए और इसके लिए तैयार हो जाए। तो फिर उसे आने दें, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
This groaning cry for that day of sweet relief when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back.
कितने तैयार हैं अपने हाथ उठाएं? ओ
आवर लॉर्ड इज कमिंग बैक। लेट्स स्टैंड एंड शेक हैंड्स विद वन अनदर। आवर लॉर्ड इज कमिंग बैक टू अर्थ अगेन। ओ सैतन विल बी बाउंड। 1,000 years विल हैव नो टेम्प्टर। आफ्टर जीसस शैल कम बैक टू अर्थ
क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सोचिए मित्र, ये पेंतिकोस्तल आराधना है, ये पेंतिकोस्त है। आइए ताली बजाकर इसे गाएं, पेंतिकोस्तल लोग, हर कोई अब खुल जाए, उस पुराने मेथोडिस्ट रिवाज को छोड़ दे। आइए आइए हम इसे गाएं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? ठीक है, मैं उससे प्रेम करता हूँ बहन गिव। ओ आइए हम उसकी ओर अपने हाथ उठाएं।